দিনে আখা ধুরি একসিল ওহেন নিমি। তো ও যাহা উসকা পয়েন্ট যা ফস যা ধসেগা ওই জায়গা সিলেক্ট করো। ব্রহ্মাজি নে পুরে ব্রহ্মাণ্ড কে উপর ও চক্র ফেঁকে মনোময় চক্র ও ঋষিও নে উসকে পিছে পিছে আতে রহে। তো চক্র ঘুমতে 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 সারে লোক ঘুমতে ঘুমতে উপর নিচে ঘুমতে ঘুমতে আয়া আকর ইসি ক্ষেত্র মে ধস গয়া মিট্টি মে। যাহা চক্র কা নিমি ঘুমতে ঘুমতে বড়ে তেজ সে ঘুস গয়া মিট্টি কে অন্দর। তো উস চক্র ঘুস গয়া সে জায়গা কা নাম চক্র তীর্থ হুয়া। চক্র কে দ্বারা ও গর্ত সৃষ্টি হো গয়া বড়ে হোল হো গয়া সৃষ্টি ও চক্র কুণ্ড বনা চক্র তীর্থ বনা। ওর এই চক্রকে নিমি ব্রহ্মাজি কে ফেঁকা গা যে মনোময় চক্র কা নিমি হা স্পর্শ কিয়া থা। তো এসলিয়ে বহুত বড় জঙ্গল এরিয়া থা ভারী জঙ্গল অরণ্য থা। তো এই নিমি ফসা থা এসলিয়ে নিমি অরণ্য নিমি সা অরণ্য নিমিস কহা গা উসকো যা কা নাম নিমি পড়া নিমিস অরণ্য থা এসলিয়ে অরণ্য অরণ্য মতলব জঙ্গল নিমি সা অরণ্য কহা গা। তো ব্রহ্মাজি কে যে মনোময় চক্র ও কেসা হ্যা উসকে বাস্তবিক অর্থ এসা হ্যা কি সারে ঋষি মুনি বৈঠ করকে লোক পরোপকার কে লিয়ে বহুত বড়ে উপায় চিন্তন করনা চাহতে থে। তো উনকে লিয়ে উনকো এক ঐসা জায়গা চাহিয়ে থা যাহা শান্তি মে বৈঠ কর লম্বা সময় তক আপনে মাইন্ড কো শুদ্ধি করকে কো সোচ বিচার কর সকে দর্শন কে বারে মে চর্চা কর সকে। লেকিন হর জায়গা মে ডিস্টারবান্স হ্যা কলিযুগ মে তো ওর ডিস্টারবান্স হ্যা। তো ইসলিয়ে উনকো এক ঐসা চাহিয়ে কি যাহা অ্যাটেন্টিভলি যা মাইন্ড একাগ্র হো মন একাগ্র হো ফোকাস করো। এই জায়গা জেসে কবি কবি আপ পড়নে কে লিয়ে কি কেউ ল্যাপটপে কাম করলে কিছু কাম করলে থাকা একান্ত চাহতে হ্যাঁ ও লেট মি ডোট ডিস্টার্ব মি একান্ত চাহতে। তো হর সময় এস একান্ত কাজ আবশ্যকতা হয় কোই চিজ কো প্রাপ্ত করলে। তো এসে একান্ত ভাব সারে ঋষি বলতে কাহা বৈঠ কর চিন্তন করে কিছু উপায় করে এসা কে স্থান কাহা ইতন লোক বৈঠ কাম করেন। তো এসলিয়ে যাহা বৈঠ করকে শান্ত মনসে একাগ্র চিত্ত সে একাগ্র মনসে ভাগবত আদি ভগবত কথা শ্রবণ করে চিন্তন করে কীর্তন করে ভগবত ভজন কর সকে এই স্থান কো চুনে কে লিয়ে চলে থে। তো এই স্থানে যা মন লগতা হইসা স্থান কবি কবি হতা হ্যাঁ পর যাতে হই আপকে সৎকর্ম মন প্রবৃত হতা হয় অটোমেটিক লগতা এসে এসে স্থান যাতা যা জানে সে দুষ্কর্ম মন লগতা হ্যাঁ না ও স্থান কে প্রভাব হতা। স্থান কাল পাত্র তিন কা আপনা আপনা হর কাম সে বিশেষ মহত্ব রহতা হয় এই স্থান কে মহত্ব হয় স্থান হি এসে হে পবিত্র ক্ষেত্র হ্যাঁ ইহা আনে সে কই ভি আয়ে উনকা মন সতগুণ মে আতা হ্যাঁ ভগবত চর্চা মে ভগবত কথা মে লেতা একান্ত হতা হয় ওর এই সংসার মন হট জাতা হয়। আমারে আচার্য লোক প্রার্থনা বিষয় ছাড়িয়া কবে তুচ্ছ হবে মন তবে হাম হেরব সে বৃন্দাবন। মে কব সে বৃন্দাবন কে ভাবনা মে যাউঙ্গা জব এ সংসার কো বিষয় কো ছোড় করকে তুচ্ছ বিষয় কো ছোড় কর মে মন শুদ্ধ হোগা। তো এই স্থান কে প্রভাব সে মন শুদ্ধ হতা হয়। তো এসলিয়ে ব্রহ্মাজি নে নির্ণয় কে এসে কহা গয়া হ্যাঁ কি ব্রহ্মাজি কে যে চক্র ও ব্রহ্মলোক সে ফেঁকে ইসে ব্রহ্মাণ্ড কে উপর ও চক্র ঘুমতে ঘুমতে পুরা সেন্টার অফ দি ইউনিভার্স এইসে পৃথিবী লোক পুরে ব্রহ্মাণ্ড কে মধ্য ভাগ মে হ্যাঁ জানতে না সেভেন্থ প্ল্যানেট বীচ মে আতা হ্যাঁ। তো সেন্টার ইউনিভার্স কে বীচ মে তো পৃথিবী লোক হ্যাঁ পৃথিবী লোক কবি বীচ মে ইয়ে ক্ষেত্র হ্যাঁ পুরা ব্রহ্মাণ্ড কে মধ্য ভাগ ये क्षेत्र है निमि क्षेत्र। तो इसलिए यहाँ जो कुछ करेंगे उसका प्रभाव समुच्चय ब्रह्मांड में पड़ेगा। जैसे एक्सिल जो होता है ना 200 स्पोक है पूरा साइकिल चक्का में अगर एक्सिल बैंड हो गया पूरा रिंग चक्का सारे स्पोक डिफेक्ट इफेक्ट होंगे ना। तो इसी प्रकार ये इसे सेंटर पॉइंट है यहाँ पर जो कुछ करेंगे पूरे ब्रह्मांड ही प्रभावित होगा उसे इफेक्ट होगा यहाँ कॉज इफेक्ट है इसी। तो इसलिए ये सेंटर पॉइंट ब्रह्मा जी ने स्वयं चुने थे। তো পর ঋষি মুনিও নে হাজার বর্ষ কে সত্র যজ্ঞ কা সংকল্প লিয়ে ও যজ্ঞ করতে রে। তো এইসে ভাগবত কা বর্ণন আতা যাবি যাবি যজ্ঞ করতে রে অনেক সাল কি হোগে ওর 50 সাল বচা হোগে কিনে লগভগ কর চুকে হোগে। তো সময় মে यज्ञ के जो इवनिंग में यज्ञ कर पूरा हो जाता थे, ब्राह्मण लोग संत थे, तो कथा होता था। ये भी एक सत्कर्म का एक इवेंट होता है कि कम से कम भगवत चर्चा, पुराण कथा आदि होना चाहिए श्रवण। तो जो भागवत के दूसरा सेटिंग के जो वक्ता जो सुत गोस्वामी है, उनका पिताजी वो पुराणवाचक सुत थे। सुत मतलब पुराणवाचक सुत होते हैं। तो उनका नाम था रोमहर्षण सुत। रोमहर्षण सुत गोस्वामी उन्होंने इस सत्र में उपस्थित रह करके सभी ऋषि मुनि मंडली को पुराण कथा सुनाते थे, पुरानी कथा कहते थे, और दिन भर उन्होंने सत्र में रहते थे यज्ञ में। ऐसे कहते, इसे कभी कभी वर्णन आता है कि उनको पूछा गया, भाई इतने बड़े पंडाल में कथा होगा, इतने बड़े यज्ञ होगा, साउंड सिस्टम तो है नहीं, कैसे करेंगे? तो ऋषि मुनि बोले, कोई बात नहीं, हम व्यवस्था किए ना, क्या ना वायुदेव को बुलाए, इन्वाइट किए, ये तो सब एयर काम होता ना अल्टीमेटली। बोले उनको बुलाए, उनको डिपार्टमेंट सौंप दिए, वो अपना करेंगे। सबके कान में जो शब्द जाता है अल्टीमेटली कौन शब्द वहन कर जाता है? वायु। बोले वायु को काम सौंपे विदाउट एम्प्लीफिकेशन, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट साउंड सिस्टम, फनल फन सब अपना वो करेंगे। 88,000 लोगों को विदाउट साउंड, सबको परफेक्टली एयरफोन की तरह सुनाई पड़ेगा, क्योंकि एयर गार्ड स्वयं डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, तो एयरफोन क्या जरूरी है, इंस्ट्रूमेंट हो, एयर गार्ड स्वयं देखेंगे व्यवस्था की। बोले भैया 88,000 लोग करेंगे, देखो आप 125 लोग के लिए किचन बड़े कितने काम लगता है, भोजन पानी की व्यवस्था क्या है भाई, हर अनुष्ठान में ये तो सबसे बड़ा इवेंट यही है ना, इस इवेंट के बिना तो सारे फेल। आप जितने बढ़िया यात्रा करो, ऐसी रूम में रखो, कितनी व्यवस्था करो, अगर भोजन सही नहीं हुआ तो हाँ ट्रीटमेंट जूते में हो जाएगा। तो बोले उसका क्या व्यवस्था है, साधु संत तो खाते हैं हम ढंग करके, व्रत आदि करते हैं, लेकिन भोजन तो करते हैं सर। तो बोले भोजन अभी कहाँ से, इतने सारे सामग्री लाएंगे, अब पकाएंगे कौन, इतने सारे प्लेट थाली भी चाहिए, भोजनशाला भी चाहिए, प्रसाद हल भी चाहिए, और टाइम भी चाहिए, और पैसे झटने फिर क्या करें। और सीधा अग्निदेव को बुलाए, बोले भैया तुम भी एक डिपार्टमेंट संभालो जाते हैं, क्या ना सबके अंदर जो पाचक अग्नि है उसका ऐसे मेंटेन करके रखो कि भूख ना लगे, खत्म, भूख प्यास लगे, उस रेगुलेटर एडजस्ट करके रख दो। तो उन्होंने अग्निदेव स्वयं रेगुलेटर एडजस्ट किए, लेकिन इसको भूख की प्यास नहीं लगे, आप बल्कि दो थोड़ा खा लो, बाद में देखे खाएंगे, अब बाद में 1,000 साल के बाद, अब नहीं भूख ही ना लगे। ऐसे कहते हैं कि उन्होंने व्यवस्था किए थे, यहाँ पास में धनुमती नदी बड़े पवित्र माना गया है, गोमती जिसको कहते गोमती नदी, उस गोमती धारा को, क्योंकि ये पूरे क्षेत्र में बैठे थे, कई छोटे मोटे जगह समझ रहे, 88,000 जहाँ बैठेंगे कितने बड़े क्षेत्र होगा अंदाज लगा लीजिए, पूरे भरे हुए थे इस पूरा अरण्य में, सारे पेड़ के नीचे लगभग बैठे थे, पूरा भरे हुए। तो उठ करके उन्हें जाते थे गोमती के लिए, तो कोई घाट नहीं, कोई अटैच बाथरूम था नहीं, गोमती के लंबी घाट कई मीलों तक सब स्नान कर, स्नान करने मात्र से भूख और प्यास मिट जाता था। एक बार स्नान करो, शरीर भी शुद्धि, क्षुधा भी निवृत्ति, तृषा भी निवृत्ति, तो वाकर बड़े पर झंझट ही नहीं, कोई चाय पानी के भी झंझट नहीं, लंच डिनर ब्रेकफास्ट का भी आवश्यकता नहीं, अब साउंड सिस्टम की आवश्यकता नहीं। बोले एक तो बात सही आप कर लिए, लेकिन हजारों साल ऐसे द्वापर युग में 1,000 साल बूढ़े होकर मरी जाते हैं, आयु का लिमिट 1,000 ईयर, सब कली युग आने वाले वो डिटोरेट होते जा रहे, शोक तक आ जाए, 10 गुना घट दी 4,000, अब 1,000 साल तो रहेगा, क्योंकि मर जाएंगे सब इतने तक जगह करते तो सब गुजर जाएंगे, बोले उसके लिए व्यवस्था हम करते हैं ना, क्या बोले देवताओं को बुला, तुमने जमराज को इन्वाइट किए, बोले भैया आप स्टाफ के सपरिवार आओ, सपरिवार बोले से छुट्टी करके वो भी आएंगे, तो उनका जो ऑफिस बंद रहेगा तो मरना होगा नहीं, क्योंकि डेथगढ़ है ना, मानने का ऑफिस उनका है, बोले ऑफिस क्लोज करके आए, किसी फाइल खोलेगा सब बंद, जब जाएंगे तब देखेंगे मर मर का व्यवस्था होगा, तो इसलिए किसी डेथ भी नहीं हो सकता। तो इसलिए कहते हैं जो भागवत कथा में बैठते हैं तो फिर यमराज उनको दिखाते, क्योंकि वो बैठ जाते हैं फिर उनका तब तक पेंडिंग रहता है, लेकिन हम लोग तो घंटे डेढ़ घंटा में उठ जाते हैं, लेकिन अगर हजार घंटे में बैठेंगे हजार साल तक तभी भी उनका फाइल पेंडिंग रहेगा जमराज जी से बैठे। तो इस प्रकार सुव्यवस्था करके और चक्कियाँ और कथा के आयोजन किया गया था। ऐसे भागवत में वर्णन आता है कि एक बार बलराम जी तीर्थ करने के लिए आए, तीर्थ के लिए निकले और बलराम जी तो साक्षात परम पुरुष भगवान है, उनको कोई आवश्यकता नहीं था, लेकिन एक बहाना, क्या बहाना कि मैं लड़ूंगा नहीं। एक्चुअली बहाना ये था, वो महाभारत युद्ध होने वाला था, युद्ध होने वाला था, वो संबंधी है, अब दोनों तो ये भी संबंधी, ये भी संबंधी, कुरु और पांडव दोनों उनके रिलेटिव है, वो अपने घर में रिलेटिव में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वो भी बुलाने आए। तो कृष्ण बलराम सोचने लगे, बोले क्या करें, किसका पास जाएं। कृष्ण बोले आप भैया है, आप भी बड़े हैं, आप बताइए क्या करें क्या करें, आप डिसाइड कीजिए, घर के अथॉरिटी आप हैं। बोले देखो मेरे मत में तो बड़े ठीक नहीं लगता है सब, तुमने ऐसे किया जो किया, लेकिन मैं तो भाई किसी की तरफ से नहीं, लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं, अपने संबंधी के बीच में, ये भी हमारे मित्र संबंधी, ये भी मित्र संबंधी, किसी का पक्ष लूँ किसी का पक्ष ना लूँ, ये तो फिर क्या करें ना, मैं तो भाई छुट्टी लेकर जाता हूँ, मैं लीव लेकर जाऊँ। कौन सा लीव लेंगे भाई, अच्छा खासा नहीं, मैंने पिलग्रिमेज, मैं जा रहा हूँ छुट्टी में, यात्रा में जा रहा हूँ, मैं यात्रा में जा रहा हूँ, आने भी देखा जाएगा, जो समय उनका लड़ाई का समय उसी समय यात्रा में रहूँगा। किस लिए यात्रा जाना चाहते इस समय, क्या अवॉइड करना चाहो, युद्ध नहीं करूँगा, लड़ाई नहीं करूँगा करके यात्रा में निकल गए। भगवान बोले, ठाकुर जी बोले, देखो मैं तो आप चले जाए, कोई ना कोई रहना तो पड़ेगा, मैं रहूँगा घर में, अब देखूँगा ना क्या करें, किसका सपोर्ट करूँगा मैं, कुछ ना कुछ तो करूँगा, देखूँगा डिसाइड हो क्या करूँ, आप जब चले जाते हैं मुझे ऊपर दायित्व आए तो फिर मैं तो कुछ करूँगा। तो भगवान ने बोले ठीक है आप जाइए, उनको विदा किया, बलराम जी अपना लगेज पैक करके जो भी हो गए, कैसे फ्लाइट में गए, तब तो फ्लाइट नहीं था, कैसे गए चल कर भी गए होंगे। तो भगवान अकेले रहे द्वारका में, और सचमुच दोनों पक्ष आए थे भगवान को बुलाने के लिए। इसे दुर्योधन मानता नहीं था कि कृष्ण ऐसे कोई खास नहीं है, लेकिन सारे लोग बहुत बताते हैं ऐसा है, चलो कुछ नहीं हो तो उनका जो सेना है नारायणी सेना बड़े अजय वीर है, एक से एक धुरंधर वीर है और असंख्य नारायणी सेना है, अगर वो सैन्य सेना कुछ नहीं मिल जाए बड़े काम का चीज़ है। तो सैन्य इकट्ठा करने में दुर्योधन बड़े चिंतित था, तो उन्होंने राजा था प्रिंस था तो अपने रॉयल मर्सिडीज गाड़ी निकाल कर वो भी निकला द्वारका के लिए कि मैं जाके इन्वाइट करूँ कुछ, हम कुछ सपोर्ट मिले उनको उनकी तरफ से। अर्जुन तो थे नहीं, अब तो मिश्र बाहर जंगल में वनवासी होकर घूम कर आए थे, उनके पास था नहीं, वो साइकिल लेकर निकले होंगे जैसे भी। तो दोनों आए तो भाई दुर्योधन तो फर्स्ट क्लास रेल गाड़ी था, वो आकर पहुँच गया पहले पहुँच गया, शाम तक पहुँच गया, पहुँच कर देखा कि भगवान विश्राम कर रहे थे, भगवान के संबंधी था, जानते ना दुर्योधन कृष्ण के संबंधी, दुर्योधन के बेटी कृष्ण के बेटा के शादी किया था, तो क्या संबंध होगा पता नहीं, नहीं? अरे भगवान के एक बेटा था जाम्बवती का पुत्र श्याम्ब, और दुर्योधन का एक बेटी थी इसके नाम था लक्ष्मणा, उनका सद्भाव हुआ था, तो इसलिए दोनों के होंगे क्या होंगे संबंधी, मतलब पक्का, ऐसे कोई हिसाब से इन लॉ में कानूनी संबंधी नहीं है, पक्का संबंधी। आजकल जैसे फादर इन लॉ, कानूनी फादर कानूनी मदर, ऐसे नहीं कानूनी पक्का थे संबंधी। और वो आए आकर तो उनको तो कोई सिक्योरिटी पास जरूरत नहीं था उनके रेसिडेंस में जाने के लिए, जाकर देखे भगवान अपने पलंग में लेटे हुए हैं और एक चेयर पड़ा हुआ है सराहना के पास में, चेयर को खींचे गए सर के पास जाकर इस बैठे बैठ गए, बोले चलो रेस्ट करें जब उठेंगे बात करूंगा इन्वाइट करूंगा, बैठ गए। तो अब अर्जुन बेचारे वो नाइट ट्रैवलिंग करते करते आए, उनका तो गाड़ी ऐसा फर्स्ट क्लास नहीं था, वो सुबह तक पहुँचा करके वो भी चले गए, वो भी तो उनके मित्र हैं, उनके सबसे नियर एंड डियर फ्रेंड अर्जुन, वो पहुँचे जा करके पैर के पास, वो जैसे पहुँचे देखे कि दूर इधर बैठे, ठीक है दुर्गंध का मुंह फैल जाए, ठीक है। बोले कोई बात नहीं, आप तो ऑलरेडी बैठे हैं, मैं चरण के पास बैठ जाता हूँ। चरण के पास वाला खाली क्यों बैठूँ, हम तो सेवक है, सेवा करना चाहिए, भगवान सोए हैं, श्री चरण को थोड़ा दबा दो ताकि हो। तो बैठ करके चरण दबाने लगे अर्जुन जी, जैसे दबाने लगे धीरे धीरे भगवान का आँख खोला। जब आप सोएंगे आँख खोलेंगे, सबसे पहले नज़र कहाँ जाएगा, पैर की तरफ ना सर की तरफ, पैर की तरफ सीधा अर्जुन। अरे अर्जुन आप कब आए, कैसे क्या, अर्जुन बोले बस बस अब आपको पता है लड़ाई तो आप डिसाइड करके आए हैं, मैनू मेनू और आप बताइए, हम चाहते हैं आप हमारे सपोर्ट में। जैसे बात अर्जुन ने छेड़ा, दुर्योधन गुस्सा होकर खड़ा हो गया, क्या कर रहे थे, मैं घंटों पहले से अगर बैठा हूँ, ये क्या हो रहा है उनसे बात। तो भगवान अच्छा आप अगर बैठे हैं क्या, मुझे पता नहीं आप कब से हैं, नहीं मैं कब से आकर बैठा हूँ, तो मुझे पता नहीं आप यहाँ आकर बैठे थे, मैं तो उठा तो नज़र उनके ऊपर पड़ा, पहले उनको देखा, ठीक है आइए बताइए क्या बात है ना, मैं भी हुई इसी काम के लिए मैं भी आया हूँ, मुझे भी सपोर्ट कीजिए चाहिए। भगवान बोले देखो बात है, दोनों ही हमारे संबंधी आप, और मैं ये डिसाइड क्यों, भाई साहब तो चले गए अब मैं हूँ, मैं देखो मैं क्या करूँ, अब दोनों की तरफ से किसको सपोर्ट करूँ किसको ना करूँ, मैं डिसाइड किया हूँ मैं स्वयं युद्ध में भाग लूँगा, लड़ूंगा नहीं, अस्त्र धारण नहीं करूँगा। फास्ट सुन लीजिए, दोनों तरफ बताता हूँ, मैं अस्त्र धारण करूँगा ही नहीं, मैं लड़ूंगा नहीं, फिर ना फिर मैं डिसाइड क्या करूँ, मेरे जो सैन्य है नारायणी सेना है, ये एक तरफ और मैं एक तरफ निहत्ता अस्त्र धारण करो, मैं एक तरफ। अभी आप चुन लीजिए कौन किसको लेना चाहता है। दुर्योधन तो खुश होता है, तुरंत बोल रहा था मैं सिलेक्ट करना चाह रहा था, लेकिन भगवान बोले नहीं चुनेंगे तो सही, लेकिन पहले चुनने के अवसर अर्जुन को दिया जाए। बोले क्यों, बोले पहले मैं उनको देखा और छोटे हैं, आप बड़े हैं, आप राजा हैं, तो बोले दुर्योधन बोल रहा था नहीं 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 ये गलत है, अन्याय है, वो है। बोले भाई जो भी हो उनको चांस दिया जाए, तो कुछ बोल नहीं सका, चलो क्या करें। तो अर्जुन जब चांस दिए चूज करने के लिए कि ये दोनों से किसको चूज करना चाहते हैं, अक्षौहिणी नारायणी सेना अजय सेना है और मैं हूँ जो मैं लाठी तक भी नहीं पकड़ूंगा। अर्जुन बोले मुझे आप चाहिए, मुझे सैन्य बनने से नहीं चाहिए। जिसे अर्जुन ने चुने दुर्योधन तो बोला क्या रे मूर्ख है नालायक, सही में वेरी गुड, मैं तो बहुत डर रहा था मुझे सैन्य ना ले जाए, नहीं उसको लेकर क्या करेगा, एक तो उनका जात पात का ठिकाना नहीं इसे रण छोड़ कर भाग कर आया था, कैरेक्टर मन खराब है, उसका सर्टिफिकेट खराब है उसका, भाग कर आया था अर्जुन से और ऐसे ही बोलता मैं लड़ूंगा नहीं अस्त्र धारण, उसको लेकर क्या फायदा, बेकार के खान बोला यूजलेस, वेस्ट ऑफ एनर्जी टाइम, उसको लिए क्या करें, लेकिन तू इसको मांग लिया भाई बहुत अच्छा, मैं तो बहुत डर था, मुझे तो सैनी चाहिए बस, तेरे से बिल्कुल नहीं चाहिए था मुझे, अगर मेरे चांस में तू आता मैं इसे रिजेक्ट करके जाता तो चलो ठीक है तो मैं सेना लेकर जाऊँ। तो सैन्य शक्ति लेकर के दुर्योधन चले गए। तो भगवान ने अर्जुन को पूछे, बोले अर्जुन तू इसे बेवकूफी क्यों किया, लड़ाई में सैन्य का जरूरत है, अजय वाहिनी मेरा है नारायणी सेना, उसको न लेकर के मुझे क्यों मांग लिया तूने। अर्जुन बोला कृष्ण लड़ेंगे तो हम नहीं चाहते कि आप हमारे लिए लड़े करके, फिर कौन ना, केवल हम हमारा साथ रहिए आप, बस आप केवल साथ रहिए, लेकिन वो साथ क्या रहूँ, मैं तो लड़ूंगा ना, लड़ना जरूरत नहीं, फिर क्या करूँ, हम लड़ेंगे नहीं, लड़ाएंगे तो जरूर नहीं कल लड़ाऊ, बोले मैं गाड़ी का ड्राइवर बन जाए मेरा गाड़ी का ड्राइवर, केवल कार का नहीं इस शरीर को भी रथ कहते हैं, और शरीर में रथ का जो स्टेरिंग है वो क्या है मालूम है ना, स्टेरिंग है करेक्ट, मन है स्टेरिंग, तो मेरा मन आप बन जाए। तो इसलिए भगवान गीता में कहते तस्मात सर्वेषु कालेषु माम अनुसरणार्थं च, मन में स्मरण करो मेरा, शुद्ध मन तो पलट दे चुका हूँ, मन यही वरण किया हूँ आपको। बोले आप अगर हमारा मेरे डोरी तेरे हाथ, तब फिर हमारा कुछ डर नहीं, हम किसी के साथ नहीं चाहिए, मैं अकेला हूँ काफी, आप सचमुच वही ये बात को अर्जुन जानते थे, भगवत तत्व को जानते थे, इसलिए केवल भगवान को चाहा। संसार से किसी प्रकार का योग्यता, कोई सर्टिफिकेट, कोई हेल्प, कोई धन धन नथिंग, ओनली भगवत कृपा, वो भी डरना जरूरत नहीं, केवल यू हैव टू गाइड मी दैट सीट। भगवान को एज ए गाइड ही एक्सेप्ट किए और परिणाम देखिए क्या हुआ। इतने भयानक महायुद्ध में जिसमें एक से एक अतिरथी योद्धा थे, कर्ण, शल्य, द्रोण, ये सब छोटे मोटे नहीं थे, सब हमारे तिमिंगल तिमिक भी निकलने वाले थे, महा महा तिमिंगल योद्धा थे, जो देवता इंद्र तक ललकार कर हराने वाले थे, लेकिन ऐसे युद्ध में ऐसे बचाए उनको केवल कृष्ण थे, बैठे थे रथ डोरी पकड़ करके, इसलिए बचा लिए। तो इस प्रकार तो वे तो भगवान देश रह गए, तो बलराम जी लड़ाई नहीं करूंगा करके छुट्टी लेकर के यात्रा में निकल गए, निकल करके घूमते घूमते नमिशरण आ गए, आज तीर्थ यात्रा में लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करूंगा, मैंने युद्ध नहीं करूंगा, तो इसलिए घर से आ गया। आए जब वो यज्ञ चल रहा था, वहां प्रवेश किए, जितने सारे ऋषि मुनि सब राम को सब पहचान लिए, बोले साक्षात परम पुरुष है भगवान भगवत स्वरूप। उठ करके तुरंत जो प्रणाम के सम्मान के उठ करके विशिष्ट सम्मान विशेष सम्मान के भगवान को, लेकिन वो जो व्यासपीठ में व्यास गद्दी में बैठे थे सूत जी, वो नहीं उठे, क्योंकि वो पीठ का नियम होता है जो इसमें बैठे हैं आसीन है आसन में, फिर किसी वही सम्मानीय सबके होते हैं, सबके प्रणाम में होते हैं, वो दूसरे फिर प्रणाम नहीं उठ करते हैं, तो इसी हिसाब से इस नियम से उन्होंने उठे नहीं, ठीक उठ वो बैठ बैठे। तो बलराम जी नजर पड़ा, बोले अरे ये नहीं उठा कैसे, सब उठते हैं, लिए क्या मुझे नहीं पहचाना, सभी ने बड़े बड़े ऋषि महर्षि सोनक आदि, सोनक वही सीनियर ऋषि महर्षि थे, सूत जी से मेरी सीनियर थे, उन्होंने उठ करके सम्मान किए, लेकिन सूत नहीं उठ रहा। तो बलराम जी रुष्ट हुए, यद्यपि ये तथा कथित लौकिक नीति के अनुसार जो व्यास गति में बैठता है वो किसी को सम्मान नहीं करेगा, जैसे कोई हाईकोर्ट में जाएगा, हाईकोर्ट जज सीट में जो बैठता है वो किसी को सम्मान नहीं करेगा, अरे ये तो कोर्ट के नियम दिखाते हैं, लेकिन भगवान के सामने फिर ये सब नीति नियम थोड़ी चलेगा, ये तो साक्षात भगवान है, कोई लोग मनुष्य तो उनको तो उनके तो वो समझा नहीं उठाता। तो भगवान रुष्ट होकर के एक घास उखाड़ ली, कुछ ग्रास, एक घास को उठा उखाड़ फेंक दिए, मर गए, स्पॉट डेथ, मार दी उसको, मर्डर हो गया उसको, मर गया तुम। तो सारे ऋषि मुनि तो क्या कहेंगे, तो भगवान है, लेकिन अब ये स्पीकर का डेथ हो गया, क्लास कैसे कंटिन्यू होगा। तो जाकर हाथ जोड़ के प्रार्थना की, बलदेव जी बोले आप प्रभु आप तो साक्षात परमेश्वर भगवान है, लेकिन हमारा ये सेशन चल रहा था और स्पीकर को अब मार दी। अब कैसे चलेगा कुछ, आप देखिए जो भी हो, हम उनको इस सीट में बैठा रखे थे, वो काम चल रहा था, हम उसको वरण किए थे व्यास के रूप में, अब तो बलराम जी ने फिर बोला अच्छा 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 अच्छा, लेकिन वो गड़बड़ ना, हम मानते हैं भूल तो किया उन्होंने, भूल तो किया कुछ, लेकिन वो मार दिए सीधा, अब हमारा काम कैसे चलेगा। तो भगवान ने बोले चलो, बोले आपके लिए तो आप तो नीति से परे हैं, आपको तो कुछ करना जरूरत नहीं, लेकिन हमारे लिए कुछ व्यवस्था कर जाइए। तो भगवान ने तुरंत उनका एक छोटा बेटा था जिनका नाम था उग्र सर्वाश्रुत, पिताजी का नाम क्या था, रोमहर्षण, उनका पुत्र का नाम था उग्र श्रवा, नाम ही ऐसा काम ऐसा था, श्रवण करने में बड़ी उग्रता था, सो अटेंटिव हियरिंग आफ्टर लिसनिंग, इसलिए उनका नाम पड़ा था उग्र श्रवा। उन्होंने वो सभा में गए थे जो गंगा किनारे सुख परीक्षित का जो भागवत कथा हुआ था, सुख परीक्षित संवाद में वहाँ उपस्थित थे, सातों दिन तक वो वेरी अटेंटिवली सुन रहे थे। श्री सुखदेव गोस्वामी उनके गुरु थे, सुखदेव गोस्वामी के डायरेक्ट डिसाइपल थे वो श्री सुत, इसलिए उनका नाम रखे थे, बहुत अच्छे सुनने में, बहुत एक्सपर्ट थे, इसलिए सुखदेव गोस्वामी का नाम क्या रखे थे, उग्र श्रवा, वेरी गुड हियरिंग, अच्छे श्रवण कर रहे, उग्र श्रवण करता, उग्र श्रवण। तो उन्होंने आए तो बलराम जी ने उनको इंस्टॉल कर दिया, बोले बोले आप बैठो मेरे के पास है, आप बोलते रहेंगे। तो बलराम जी ने उनको सीट में बैठा करके बोले, तो फिर बाकी सब ऋषि मुनि बोले देखिए बहुत अच्छा कि ऋषि मुनि भाई काम निकाल लिया जाए, साक्षात भगवान प्रकट हुए हैं, जो कुछ आप काम हमसे नहीं बने उनसे। तो बोले क्या आप तो कोई ज़रूरत नहीं आपको तो कर ले, लेकिन जो भी आप अगर कुछ नहीं करेंगे आपको तो कुछ लगेगा नहीं, लेकिन दुनिया के लोग आपके नाम ले करके बोले हम भी ऐसा करेंगे, जिस किसी को बदा कर देंगे हमको कुछ लगेगा नहीं। बोले फिर हम चाहते हैं कि आप इसे उदाहरण प्रस्तुत कीजिए, क्योंकि जज जद आचरति श्रेष्ठ तत्व देव इतरोचना, श्रेष्ठ जन जो जैसा प्रमाण सुन छोड़ जाते हैं इतर लोग ऐसा ही काम करते हैं, है ना। तो इसलिए समाज में हमेशा कोई ना कोई नेता, कोई एक मॉडल होना चाहिए। आजकल समाज में नेता साधारण लोग किसको चुनते हैं, कोई फिल्म स्टार, कोई क्रिकेट स्टार, है ना, नहीं बोलते हैं हमारा तो वही मॉडल है अमिताभ बच्चन स्टाइल, ये स्टाइल क्या क्या कोई स्टाइल निकालते हैं जिसको करके उन्हीं को जीवन मॉडल मानते हैं, लेकिन नहीं मॉडल होना चाहिए ऐसा उचित। तो इसलिए जो साधु संत हैं भगवान भगवत पुरुष साधु संत ऐसे मानते हैं, तो बोले आप ऐसा कुछ प्रमाण कर्म छोड़ना चाहिए कि इतर लोग उस प्रमाण करें ना, क्या ना कुछ आप प्रायश्चित कर्म भी करना चाहिए। तो मैंने बोलो ठीक है मैं कर लूँगा, कोई बात नहीं, सारे तीर्थ बोल करके दान धर्म बोले करूँगा जगह आदि। बोले और एक काम हमारे लिए कर दीजिए ना, क्या ना, यहाँ एक दो असुर रहते हैं, बलबल इलबल, इलबल बलबल असुर, ये बड़ा डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि घोर जंगल है ना, जंगल में राक्षस असुर सुख शरण लेते हैं बड़े हमको यज्ञ में आकर तंग करते हैं। तो भगवान यहीं पर दो असुरों को बद्ध किए थे, उनको मार करके यज्ञ को संरक्षण दे करके करके भगवान आगे गए थे। तो बड़ा भगवान बलराम यहाँ आए थे इस क्षेत्र में। तो इस युग युग में ये क्षेत्र ब्रह्मा जी का मत में ये पूरी ब्रह्मांड में तीन स्थान है, एक मध्य के लोक, ऊपर के लोक और नीचे लोक। नीच लोक में और ऊपर लोक में और मध्य लोक में तीन जगह में तीन तीर्थ है प्रधान प्रधान। तो इस मुख्य बीच वाले लोग स्थान में सबसे मुख्य तीर्थ नैमिषारण्य है, क्योंकि सेंटर पॉइंट में ब्रह्मा जी का डिसीशन था। तो उस पर इस नैमिष क्षेत्र में तो भागवत का जो सुत गोस्वामी बैठे मंच पर, तो सनकादि ऋषि अब भागवत का प्रथम स्कंध में पढ़ेंगे, वो बोलते हैं कि हे सुत गोस्वामी आप हमको ये बताए, देखे हम कौन से हजारों साल से चतुर लिए थे, लगभग 900 ईयर्स कर चुके हैं, अभी तक तो हमको पता है जो हम कर चुके हैं, रियलाइजेशन इतना कुछ खास नहीं है, तो आप कुछ हमको ये बताइए। भागवत के प्रथम स्कंध में जो प्रथम अध्याय है, तो आप देखें मुनियों की जिज्ञासा, छह प्रश्न उन्होंने पूछे थे, ये जो जिज्ञासा है जो प्रश्न है इसी क्षेत्र में पूछा गया था। सारे हजारों संख्या में ऋषि मुनि मिल करके ये छह प्रश्न श्री सुत गोस्वामी के सामने रखे थे। आप सब पढ़े होंगे, बड़े मुख्य मुख्य प्रश्न है जिसमें से प्राय कृष्ण के लीला के संबंधित प्रश्न था। एक मुख्य प्रश्न था जिसमें कि इसे कलिजुग आ रहा है, एक कलिजुग में हम लोग का मंद आयु, मंद बुद्धि, मंद भाग्य और उपद्रवता सब झगड़ालू है। इस अवस्था में हमारे पास टाइम भी नहीं है, भाग्य नहीं है, बीमार है, सब कुछ है, तो ऐसा कुछ उपाय बताइए। और शास्त्र पढ़ने ना समझ में आते, बुद्धि बुद्धि नहीं पढ़ने के लिए, पढ़ नहीं सकते हैं, ज़्यादा पढ़ने के लिए टाइम भी नहीं, तो ऐसा कुछ हमको सूत्र बताइए, कुछ उपाय बताइए जिसके द्वारा हमारे पास डाउट ना रहे, 100% होगा, ट्रायल बेसिस नहीं, श्योर होगा, श्योर शॉट, और कम समय में भी होगा, और हमको करने में बड़ा आसान हो, क्योंकि हम बड़े आलसी है, वी आर लेजी, डैम लेजी, ऐसे करना कुछ नहीं चाहते। तो इसलिए महा आलसी के लिए अब कितने आसान काम चाहिए, है ना, नहीं हमको तो बोले सो रहा हूँ, भूख तो अरे खाए तो बड़े ना, कोई आकर खिला दे, बना करके ग्राइंडिंग करे पेस्ट करके, तो इतने वहाँ आलसी है ना, तो इसे आलसी के लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं, बहुत डिस्काउंट दे करके। अब सब प्रकार से कुछ ऐसे उपाय बताइए सारे शास्त्र को देख करके जो सबसे सरल हो, सुगम हो, सहज हो और निश्चित रूप से फलदायी हो, बहुत कम समय में हो और हम जैसे हतभाग्य हतबुद्धियों के लिए काम में आवे। तो हमारे जीवन जब आत्मा सुप्रसिद्ध थी, हम शरीर के लिए करते करते मर गए, हर जन्म में शरीर का आराम देने के लिए काम करते रहते हैं। इतनी सारे पढ़ाई लिखाई नौकरी वगैरह किस काम के लिए करते हैं? आजकल पूरे संसार में जितने वैज्ञानिक उद्भावन है, जितने इंस्ट्रूमेंट्स है, ये शरीर किस काम के लिए आता है? केवल शरीर धर्म है, इंद्रिय तृप्ति शरीर के लिए होता है। अब शरीर के बिना, शरीर के अंदर कोई शरीर ही है, उसका अंदर कोई आत्मा है, ये तो पूरे विश्व में कोई इंस्टीट्यूशन में कोई बताता नहीं, कोई पढ़ाता नहीं, कोर्स में है ही नहीं, इट्स आउट ऑफ सिलेबस, सिलेबस में है ही नहीं कि यू आर ए सोल, यू आर नॉट दिस बॉडी, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कोई सिलेबस में है नहीं। लेकिन हम ये बात जानते हैं, हम ये शरीर नहीं, क्योंकि शरीर मरता है। हम तो बड़े मुश्किल से जमराज को बैठा कर इतना हजार साल का रखें, हम देख नहीं मरते हैं किस प्रकार, सब आउट होते चले जा रहे, सब मरते जा रहे। इसी को लेकर के धर्मराज युधिष्ठिर को जब पूछा गया था, इस संसार से सबसे बड़ी आश्चर्य क्या है, मोस्ट वंडर, तो दृष्टि महाराज बड़े धर्मराज थे, सोच विचार करके वही कहे थे, अहनी अहनी भूतानी गच्छन्ति जम मंदिरम शेषम जीवन इच्छन्ति किम आश्चर्य। अह मतलब दिन, एवरी डे, डे बाय डे हम देखते हैं, अभी आते समय दो चार एक्सीडेंट देखते, लंबे लंबे पड़े थे कुछ, एवरी डे सुनो ये इधर गुजर गए। अभी तक आप जितने हम बैठे हैं, जितने नहीं बैठे हैं, आप सच बताइए, कौन नहीं जानता है कि हमारे दादा परदादा सब कहाँ गए, गए गए, कहीं भी कोई छोटे मोटे गांव हो, स्कूल कॉलेज क्लब हाउस यूनिवर्सिटी ना हो, लेकिन मरघट तो, अरे तो कंपलसरी, भले बेडरूम ना हो लेकिन ये तो होगा ही, क्योंकि मरना। अरे यहाँ तक कहते हैं ये जिस लोक में हम रहते हैं, इस लोक का नाम जानते ना क्या है, उसका नाम है मृत्यु लोक, उसमें काम ही एक ही होता है, काम केवल मरना ही होता है। जो इधर आते हैं केवल मरने के लिए आते हैं, और जे सारे व्यवस्था रखा गया किस लिए है, मरवाने के लिए, दिस इज द प्रोग्राम एजेंडा ही। तो इसी मृत्यु लोक में शरीर मरता है, आत्मा मरता है क्या? बोले हम ये बात को समझ गए ऋषि मुनियों ने, बोले तो इसलिए हम चाहते हैं, शरीर तो ऐसे मरता है, बनता है, बिगड़ता है, लेकिन शरीर के अंदर जो आत्मा जो सुभोगता है, तो उसके लिए कुछ कल्याण की बात बताए। जब आत्मा सुप्रसिद्ध थी, जो आत्मा प्रसन्न हो जाए, शरीर तो ऑटोमेटिक प्रसन्न हो, क्योंकि कवर है, पैकेट से आउटसाइड पैकेट से क्या मतलब, असली माल प्रसन्न हो जाए। ये प्रश्न पूछे, ऐसा कुछ ऐसे उपाय बताए जो वेरी शॉर्टकट, हम काम ना करना पड़े, ज्यादा परिश्रम भी करना ना पड़े, और श्योर हो जाए, कम समय में हो जाए, बड़े आसान से हो जाए, और जिसमें आत्मा भी सुप्रसन्न हो जाए। एक प्रश्न पूछे थे, जिसके उत्तर में उन्होंने सुत गोस्वामी बड़े सोचे, बोले क्या कहूँ इतने कम समय में इतने से। तो उन्होंने सोचे कि मैंने अभी अभी आंखों देखा, बल्कि सुनने का नहीं, मैं देख करके आया विद इन 7 days, विद इन ए वीक, एक हफ्ता में, जिनको ब्रह्मशाप लगा था राजर्षि परीक्षित को, एक हफ्ते में पूरा नहीं हुआ, वो खुशी खुशी में शरीर छोड़ के चला गया, ढक्कन तो वहीं पड़ा रहा, वो तो चला गया। बोला 7 दिन पहले से, जब सुखदेव गोस्वामी बोले परीक्षित जी ठीक है, बोले गुरु जी आपकी कृपा से तो मैं तो जा चुका हूँ, अभी तक्षक आए चाहे कोई भी आए, आ करके वो तो दाह संस्कार क्रिया करेगा, मैं तो जा चुका हूँ, परम पद प्राप्ति कर चुका हूँ, एक वीक के अंदर वो कर लिए। तो मैं अभी भी देख कर का आया। ये जो भागवती कथा, भगवान की लीला कथा का वर्णन इतने शक्तिशाली, इतने प्रभावशाली है, एक हफ्ता पूरा भी नहीं हुआ सब, पहले से उनको उद्धार कर दिया आत्मा को, शरीर तो तख्य गाकर चला है, लेकिन वो आत्मा तो चला ही गया था। तो आप कोई कुछ नहीं, आत्मा शुद्ध जो वही बात को तो मैं कहूंगा। उन्होंने बोले मैं वही बात अभी अभी सुन करके देख करके आया हूँ, कुछ सुना नहीं, I have seen it. मैं सुना भी और देखा भी. कोई ज्यादा प्रणाम देख कर का तब उसको बताने लगे. तो इस बताकर डिसीशन जो दिए, सभी पुनसा परो धर्मो ये तो भक्ति रुख्य. ये केवल के एक नहीं, प्रत्येक पुरुष के लिए, सभी पुनसा प्रत्येक पुरुष के लिए परो धर्म, परम धर्म. क्या परम धर्म है प्रत्येक पुरुष के लिए? सभी पुनसा परो धर्म यतो भक्तिर अधोख्यज. अधोख्यज भगवान की भक्ति ही प्रत्येक पुरुष, स्त्री पुरुष बाल बच्चे वृद्ध, प्रत्येक के लिए एकमात्र परम कर्तव्य होता है, परम धर्म होता है भगवान की भक्ति करना. कैसे भक्ति करना है ना? अगर ये दो विशेषण जो वाले भक्ति करें, अहेतु की अप्रतिहता भक्ति करें जिसके द्वारा आत्मा सुप्रसन्न हो जाए. अहेतु की अप्रतिहता जब आत्मा सुप्रसिद्धति. आपने पूछे थे आत्मा प्रसन्न होने के लिए, यही आत्मा प्रसन्न होने का उपाय है. और पूरी भागवत को वर्णन करते 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 पूरा 12 स्कंद 18,000 श्लोक जो 18,000 दी लास्ट वर्स में डिसीजन दी कंक्लूजन डिसीजन जब देते हैं श्री श्री सुत गोस्वामी, वो ये कहते हैं नाम संकीर्तनं जस्य सर्व पाप प्रणसनम प्रणामे दुख समनम तंग नमामि हरि परम. नाम कीर्तन इतने आसान और कहां, ना मेहनत करना पड़ता, ना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता, और इसके लिए तो सारे छूट भी दे रखे हैं भगवान. यही कलयुग के एकमात्र उपाय. ये बात को निर्णय भागवत क्या है. तो इस प्रकार की भागवती चर्चा इस नवीसारण्य में हुआ था. ये तो हम लोग के लिए हुआ था. इसके पहले भी इस क्षेत्र में अनेक ऐसे वर्णन आता है कि यहाँ सृष्टि से प्रथम प्रजापति के रूप में ब्रह्मा जी के प्रथम मनुष्य रूप में पुत्र होते मनु अन्न सतरूपा प्रथम कपुल, उन्होंने यहाँ पर सृष्टि के आरंभ में तपस्या किए थे. मनु सतरूपा ने तप किए थे. इसी पर यहीं पर कहा गया है कि महाराज दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रष्टि यज्ञ में किए थे. श्रृंगी मुनि को बुला करके यहाँ पुत्रष्टि यज्ञ किया गया था. ऐसा स्थली है, यहाँ पर स्थान है जहाँ पर यज्ञ कराए गए थे. तो यहीं पर श्री जब अंत में आप जानते हैं सीता जी को वनवास दिया, ब्राह्मण वर्णन आता है. भगवान ने एक धोबी के बात सुन करके सीता जी को निर्वासन किए थे. तो लक्ष्मण ने जाकर के इसी क्षेत्र वाल्मीकि क्षेत्र यहाँ से बिठूर तक ब्रह्मावर्त वाल्मीकि आश्रम था, इस क्षेत्र में लाकर दिए थे जहाँ पर सीता जी जब गर्भवती थी तो वाल्मीकि आश्रम में उनके पुत्र लव और कुश उत्पन्न हुए थे, जिनको वाल्मीकि जी ने ट्रेंडअप किए थे बचपन से, रामायण गान सिखाए थे. तो रामायण गाते गाते एक बार भगवान ने आए थे इधर, तो भगवान के सामने वो सुनाए रामायण बहुत प्रजामंडल के सामने. भगवान के यहाँ भी होगा ऐसे रहने में आते होंगे, भगवान राम का एक्सटेंशन मन बड़े आवास होगा, बहुत बड़े कोठी होगा, यहाँ सब बैठ करके रामायण सुनाए थे. रामायण को सुन करके भगवान राम डिसाइड किए कि दो पुत्र मेरे हैं, स्वपुत्र करके निर्णय किए. उसी सीता जी भी आई थी वाल्मीकि मुनि के साथ. तो फिर वाल्मीकि महर्षि ने हजारों मंत्री परिषद राज्य के जनता के सामने इस क्षेत्र में जब स्वीकार किए, राम जी को बोले कि ये आपके पुत्र हैं और ये आपकी पत्नी हैं, सीता जी आप स्वीकार कीजिए. जो स्वीकार करने लगे भगवान राम तो चाहते थे, बहुत गदगद हो गए आपने बेटे को देख करके पहले बार, और इतने योग्य पुत्र आपने पति पत्नी को भी देखे हैं, देख करके एक्सेप्ट करना चाहते, स्वीकार करना चाहते थे. लेकिन स्वीकार इतने सारे जनता के सामने मर्यादा रक्षण करना था उनको. बोले कि और एक बार परीक्षा देना पड़ेगा आपके सतीत्व की, और एक बार टेस्ट करना पड़ेगा. पहले बार भगवती सीता को भगवान ने भी टेस्ट किए थे, ये सेकंड टेस्ट करना चाह रहे. जब अशोक वन में सीता जी थी, रावण ने हर के ले गई थी, और भगवान ने उनको खोज खोज करते करते जा करके युद्ध किए, समुद्र के ऊपर बंध बनाए, और राम रावण भयानक युद्ध हुआ लंका में, रावण वंश सब निधन हो गया. मारे रावण वध करने के बाद विभीषण को तो राजा बना करके तो भगवान लंका में बैठे, तो विभीषण को हनुमान को भेजे, वो गए सीता जी को लाने के लिए अशोक वाटिका से। सीता जी को जो खबर मिला रावण वध हो चुका है, विभीषण राजा बन चुके हैं, भगवान राम आ चुके हैं और उनको गुलाब भेजे हैं, इतनी प्रसन्न हो गई, इतने खुश हो गई कि आप अनुमान कर सकते हैं, है ना नहीं? जो इतने दिन तक भगवान राम से विच्छेद में विहीन में रह करके कितने कितने निर्जातना, कितने दुख तड़प कर रही थी, एक दाना भी नहीं खा पा रहे थे, ना खा पा रहे थे, ना सो पा रहे थे, ना कुछ भी कर रहे थे, पूरे बड़े भयानक देखने वाले राक्षस राक्षसियों के बीच में इस प्रकार प्रताड़ित और इस प्रकार कष्ट को सहन करते हुए भगवान राम की चिंता में निरंतर इतने दिन पर दिन बिताई थी। आज अंत में जब खबर उनको मिला कि उनके पति प्रभु श्री राम आकर के समूल नाश करके रावण को, उनके शत्रु विनाश करके सीता जी को रक्षा करने के लिए उनको बोले हैं, अब बुला रहे हैं उनको, तो इतने खुश हो गई, इतने खुश हो गई कि इतने दिन के बाद ढंग से कुछ तो था नहीं, ड्रेसिंग टेबल की जो थोड़ा बहुत ढंग से नहा धो करके सेट होकर के आई, सबसे पहले आज पति को दर्शन करेगी, मिलेगी, बहुत प्रसन्नचित होकर अपने को श्रद्धा कर जब आई थी, तो यहाँ भगवान राम के साथ विभीषण के पूरे जो उनके सेना उनके लोग सब थे, भगवान के पूरे पार्षदगण हनुमान और सुग्रीव हनुमान आदि जो उनके वानर सेना वाले संस्कृत सब के बीच में सीता जी जब लाया गई, तो भगवान ने सीता जी जब आई प्रणाम कर रही थी, भगवान ने उपेक्षा की दृष्टि से देखे, उपेक्षा की, क्या बुलाए अब तो उपेक्षा क्यों कर रहे हैं, तो सभी गंभीर थे, लक्ष्मण ऐसे थे कि भगवान क्या हो गया, उपेक्षा कर देते, तो अंततः भगवान ने बोले सीता जी हाथ जोड़ते बोले, प्रभु क्या ना आप इतने दिन तक दूसरे का घर में रावण न हरने के लिए का तो उनका घर में रहे, उनके कस्टडी में रहे, तो मैं आपको कैसे स्वीकार कर सकता हूं, मैं जो अभी तक जो काम किया, एक राजा का धर्म निभाया, एक क्षत्रिय का धर्म निभाया, कि एक डकैत जो स्त्री अपहरणकारी को बद्ध किया, ये राजा का धर्म था, उसको दंड दिया, एक क्षत्रिय और राजा के नाते मैं जो किया ये धर्म पालन किया, लेकिन एक आदर्श पति, एक मर्यादा श्री पति का जो धर्म है अभी तक नहीं निभाया, मैं आप दूसरे घर में इतने हमें कैसे क्या कर लूँगा, फिर आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आप सही है। अब अगर आजकल के जमाने में किसी को बोल दिया जाए इस प्रकार, माता जी लोग इन्हें वो जो मैं रामायण की दर्शक बात कहता हूँ, तो तुरंत जवाब दे, मैं तू कोई दूध के धुले हुए नहीं हो, मुझे क्या देख रहे बात कर रही, इतने डांट देंगे चढ़ जाएंगे और हाल खराब कर देंगे, तो आजकल तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट करता केस ना हो जाए, ऐसे बोली नहीं हाँ और क्या, लेकिन धन्य है भगवती सीता, एक शब्द भी उच्चारण नहीं की ऑब्जेक्शन में, यद्यपि भगवान को ही पता था, भगवान अंतर्यामी है, एक क्षण तक एक सेकंड तक भी सीता ने केवल राम चिंतन कर रही थी और कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन फिर भी भगवान ने सबके सामने इसे कहे, अरे किसी को कोई डांट बांट कर बोल दो घर में झगड़ा में कोई बात, पब्लिकली सबके सामने, अब जानते हैं कि सही है, फिर भी उनके इस प्रकार कहना, फिर भी सीता जी ने कुछ ऑब्जेक्शन नहीं की, तुरंत उन्होंने हाथ जोड़ के बोले स्वीकार, आप चाहते हैं मैं परीक्षा दूं, लक्ष्मण अग्नि संयोग करो, मैं अग्नि परीक्षा देना चाहती हूँ, प्रभु को मन में विश्वास हो जाएगा, मैं अग्नि प्रवेश करके दिखाऊंगा कि मैं अगर सही हूं, तो लक्ष्मण ने अग्नि संयोग की, सभी के सामने भरी सभासद सभी प्रजावर्ग के सामने भगवती सीता रामचरण को स्मरण करती हुई अग्नि प्रदक्षिणा की और हाथ जोड़ के भगवान राम को यही कहे कि अगर मैं जितना दिन आपके विच्छेद में रही अगर शयन में, स्वप्न में, जागृत में, किसी भी क्षण में अगर आप किसी चरण के अलावा और किसी का स्वप्न में भी चिंतन की होगी तो हे अग्नि मुझे भस्मसात कर दे, तो प्रवेश कर गए। सबके देखते हाहाकार मच गया, हम तो देखते आंख बंद कर देंगे, ये होगा, प्रवेश कर गए। अग्नि प्रवेश करने जा रही थी, वो तो सब आंख आश्चर्य हो गए, ब्रह्मा तक आ गए, बोले ना 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 ना, पुष्प वृष्टि होने लगे देवताओं ने, ब्रह्मा तक बोले नहीं मैं प्रमाण देता हूं बिल्कुल सत्य। अग्निदेव प्रकट हो गए, बोले ना ये सही, सभी का सामने इसे प्रमाण दे करके आई थी, प्रकट प्रमाण पब्लिकली प्रूव किया गया था सत्य, सीता जी के सत्यत्व। उसके बाद में एक धोबी कहने का कहा तो उनको फिर भी वासन दिए, और अंततः वाल्मीकि ऋषि जब उनको सौंपे कि ये आपके पुत्र है, आपको पत्नी स्वीकार करो, तभी राजन्य मंडली भरी सभा था। तो भगवान राम तो अंतर में तो बहुत चाहते थे, बड़े दुख था तब, लेकिन फिर भी कहे कि ठीक है वासन से अगर आप चाहते हैं राजभवन आने के लिए और एक बार परीक्षा देना होगा। अरे तभी तो रावण राक्षस, अभी तो ऋषि मुनि के आश्रम था, तभी डाउट डाउट तो डाउट है घर से बाहर भगवान का डाउट, और उस डाउट को क्लियर करने के लिए उन्होंने बोले। फिर भी सीता जी कुछ नहीं बोली, चुप थी सीता जी, कुछ नहीं बोली, लेकिन महर्षि वाल्मीकि संभाल नहीं पाए, भरी सभा में उठकर चिल्ला करके बोलने लगे, उद्घोष करने लगे, बोले मैं महर्षि वाल्मीकि कह रहा हूं, आजीवन मैंने जप तप साधन स्वाध्याय व्रत नियम आदि पालन किया हूं, मैं कह रहा हूं कोई सत प्रतिशत तो साध्वी है सती है, अगर उसमें कोई 1% भी आंच आ जाए तो मेरे आजीवन तप जप भस्मसात हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, मैं पूर्ण गारंटी देकर कहता हूं उसे, तो आप उनको स्वीकार कीजिए। ऐसा जब कहे देवताओं ने पुष्प वृष्टि फिर की, सभी लोग एक निश्चित रूप से, लेकिन सीताजी तो कुछ कही नहीं, इतने पर भी सीताजी ने हाथ जोड़ के केवल ठीक है, अगर फिर भी मेरा परीक्षा चाहते हैं, अब आप पुत्र को प्राप्त किया, मेरा वो कर्तव्य कुछ नहीं, हे माँ धरती मैं आपसे प्रकट हुई थी, वही बात कही, अगर अब तक इसी क्षण पर्यंत में श्री रामचरण के अलावा और किसी का स्वप्न पर्यंत भी स्वप्न भी चिंतन किया होगा नहीं किया होगा तो मुझे आपके गोद में आश्रय दीजिए। वहीं पर इस क्षेत्र में यहाँ पर ललिता देवी का मंदिर है, उसके पास में जानकी कुंड है, यहीं पर उन्होंने धरती में समा गई। ऐसे कहते हैं कि भगवती सीता जब भगवान राम लंका युद्ध के बाद वापस आए, उनका राजतिलक हुआ अयोध्या में, तो राजतिलक के बाद में उन्होंने एक पाप निवृत्ति यज्ञ करने के लिए आए थे इस क्षेत्र में, यज्ञ स्थल यही था, अयोध्या से आए थे पूरे राजपाट के साथ। यज्ञ में भगवती सीता कही, देखो मेरे लिए आप इतने बड़े करते हैं, मेरे लिए शिव रावण वध सब कुछ मेरे ही वजह से हुआ, तो मैं चाहती हूँ कि कम से कम भली प्रकार से ब्राह्मणों को दान दक्षिणा किया जाए, उनको शांत किया जाए, जब ब्राह्मण के वरदान रहेगा वो तृप्त होंगे तो हमारा बाधा विघ्न सब कट जाएगा। तो पत्नी के बात से भगवान ने भली प्रकार से ब्राह्मण को दान दिए, एक क्षेत्र दान में दिए, दे करके इलाका दे दिए ब्राह्मण को दान में, और सीता जी के नाम से दे दिए, इसलिए सीतापुर करके डिस्ट्रिक्ट है इधर, इसलिए नाम उसका पड़ा सीतापुर। इस पुरी में जो रहेगा वो सीताजी की दी हुई पुरी है, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में आता है नवसारण जिला, उनके नाम से दिए इस प्रकार। तो यहीं पर लव कुश के रामायण के गान, भगवान के साथ मिलन, और यहीं पर सती की सीताजी की धरती में प्रवेश आदि था। ऐसे कहा गया कि यहाँ पर एक सूर्य कुंड एक जगह में है गोमती किनारे, यहाँ पर सूर्यदेव के जो पत्नी थी संज्ञा, सूर्य की इतने प्रचंड प्रभाव से तेज से वो संभाल नहीं पा रही थी, तो उन्होंने अपना एक दासी जो छाया थी उनको सूर्य के पास छोड़ करके स्वयं आ गई यहाँ तपस्या करने के लिए। लेकिन कैसे पति मिले, मैं उनको तेज संभाल नहीं पा रही हूँ। तो आकर के हाँ घोर तपस्या की, सूर्यदेव ने ढूंढने की, भाई मिसेज कहाँ चले गए। तो ढूंढते ढूंढते उनको पता चला है कि वो तप करने गई बीच लोग में। तो सूर्य भगवान ने अपने तेज से बोला, वो तेज की वर्षा डर जाती है। तो भगवान ने एक अश्व रूप धारण किए, घोड़े को धारण करके सूर्य भगवान ने उनको तलाश करते करते ढूंढते ढूंढते आई आए और आ करके वहाँ उनको देखे। तपस्विनी के रूप में संज्ञा देवी थी, तो उनको देखे, दोनों पति पत्नी देखे, तो ही उन दोनों का मिलन हुआ था। तो उन मिलन के कारण अश्व के रूप में सूर्य थे, तो उनके एक दो पुत्र हुए थे संज्ञा के गर्भ से, जिनका नाम पड़ा अश्विनी कुमार, देवताओं के फिजिशियन है नट्टन। तो ऐसे कथा आता है, यहाँ से थोड़े दूर आप आते समय देखें मिश्रित क्षेत्र है, यहाँ से थोड़ी दूर पर है विशन्न विशरण्य के क्षेत्र में आता है, वहाँ पे दधीची मुनि का आश्रम है। दधीची मुनि का नाम आप सुने होंगे, भागवत के नवम स्कंद में एक कथा आता है। जब वृतासुर प्रकट हुआ था, इंद्र ने विश्वरूप वध किए थे, विश्वरूप ब्राह्मण थे। तो एक्चुअली इंद्र ने क्या किया था उसके ऐसे कथा आता है। एक बार बलि महाराज ने इंद्र के अमरावती को जीत लिए और उनको मारपीट कर भगा दिए। वो जाकर कुछ पूछे ब्रह्मा जी, बोले इसे की क्या करूं। ब्रह्मा जी बोले देखो तुमने गड़बड़ी किया ना, क्या इंद्र का थोड़ा मिस्टेक हो गया था। इंद्र आदि देवता देवलोक में बैठे थे, बृहस्पति जी उनके जो गुरु जी आ रहे थे, गुरु जी आ रहे थे, तो वो लोग इतने भोग में व्यस्त थे तो थोड़ा ओवरलुक किए, देखे ना ठीक है आ रहे हैं बैठेंगे, अपने सीट तो है बैठ जाएंगे अगर। तो बृहस्पति बोले देखो दे आर माई फॉलोअर्स, माई स्टूडेंट, दे आर नॉट रिस्पेक्टिंग मी। प्रॉपरली बैठे तो बृहस्पति जी को बड़ा इंसल्ट फील हुआ, फील अफेंडेड। तो उन्होंने कुछ कहे नहीं, चुप से निकल गए, जा मैं नहीं जाता उनके पास। वो थोड़ा अभिमान करके चल बैठे वहां से, थोड़े मन में गुस्सा करके चल दिए, आए नहीं। तो इंद्र को अरे गुरु जी आ रहे थे कि आए नहीं, चले गए क्या? तुरंत किसी को मैसेज भी बुला बुला, वो है नहीं। तो इंद्र ने स्वयं सबके प्रोग्राम उठ कर गया, देखा गाड़ी है नहीं उनका, है नहीं कहीं, चले गए। तब तलाश किया, खूब ढूंढा इधर उधर उनके घर में, फोन किया इधर उधर, क्या सब पता लगा, बोले है नहीं। बृहस्पति कहीं छिप गए जाके, छिप गए आए नहीं, कितने बुलाए मैसेज भेजे कुछ आए नहीं। ये बात को वो छिपा कर रखे थे, लेकिन बलि महाराज का इंटरनेट सो पावरफुल था, उनका कनेक्शन सो पावरफुल था, वो कैसे पकड़ लिया उनको, ये बात को जान ली, ये मैसेज उनको पहुंच गया। पहुंच गया तो शुक्राचार्य को बोले कि उनके गुरु जी ने उनको छोड़ दिए, दिस इज दी टाइम, अभी उनके लिए गुरु जी की कृपा नहीं है, अब भी अटैक करो तो गए, अटक नहीं पाएंगे। इमीडिएट बड़े महाराज ने अटैक किया और मर गए सारे भाग। अमृत पी के सुबह गला तक अमृत पिए थे, लेकिन डर के मारे भागे, मरे नहीं हारे हार के गए भागे। तब ब्रह्मा जी बोले भाई उनका प्राण पढ़ाए तो आप गुरु अवमान ना किए तो इसलिए हो नहीं पाएगा, ना क्या कर, ना कोई एक गुरु वरण करो तब जाकर आपको बचाव होगा, नहीं तो नहीं बच नहीं सकते। बोले कहाँ से गुरु, गुरु जी मिल नहीं, छिप गए मिल नहीं रहे, आ नहीं रहे। बोले कुछ तो करो व्यवस्था, बोले आप बताइए ना। बोले देखो एक ब्राह्मण है, बड़े तेजस्वी ब्राह्मण है, उनका नाम है विश्वरूप, तुष्टा के पुत्र है, तुष्टा के पुत्र विश्वरूप है, बड़े तपस्वी हैं, और उनको जाकर के गुरु को ग्रहण करो। बोले वो तो जूनियर है, हमारा लड़का जैसा होगा। बोला अरे लड़का है जूनियर है, लेकिन जाओ वो है काम का, आपका काम करवा सकता है, जाओ। तो ब्रह्मा जी का कहने से इंद्र एंड कंपनी, सारे देवता वायु वरुण अग्नि सब मिल करके, तो उनको ब्रह्मा जी ने भेजे तो बोले जाओ विश्वरूप के पास। विश्वरूप के पास आए, विश्वरूप जी अपने तप में बैठे हुए थे, वो तुष्टा के पुत्र थे, यंग थे, और तुष्टा देवता गुण देवगण में आते थे, इंद्र आदि के सामने उनका है। तो तुष्टा के पुत्र होने से ये क्या होगा उनका, विश्वरूप उनके अरे भाई के पुत्र होने से क्या होगा, भतीजा है, ऐसा में भतीजा लगेगा। तो आ करके इंद्र आदि सब बड़े बड़े अपना पोस्ट हेलमेट मुकुट फूल लगा कर आके प्रणाम किए, विश्वरूप चाचा जी आप दादाजी अंकल आप क्या हो गया था? अरे अंकल फंकल बात छोड़ो ना, आप क्यों प्रणाम करते ना, आप वो नियम बताने लगे। इंद्र ने सिखाया, बोले देखो विश्वरूप, ये जो सम्मान है ना, ये इस प्रकार नहीं है, अलग अलग हिसाब से अलग होने के लिए। कैसे? बोले जो क्षत्रिय होते ना, वो जिसका बल ज्यादा होता है उनको सम्मान मानते, भले एज में कम हो, अगर इज रियली पावरफुल तो बड़े बड़े क्षत्रिय बोलेंगे ये हमारे नेता है, उनको सम्मान करेंगे। क्षत्रियों का विचार, और वैश्यों का विचार है किसी को सम्मान करेंगे जिनके पास धन ज्यादा है, भले एज में बड़े हो छोटे हो कि जात में छोटे हो, नहीं देखेंगे, वो धन है तो उनको पूजा करेंगे। हम जैसे हैं सब, जिनके पास पैसा है उनको नमस्कार, तो बोले वो तो ऐसा करेंगे। और जो शूद्र है वो जिनका एज है ज्यादा उनको सम्मान करेंगे, उनके पास कुछ है नहीं। लेकिन जो ब्राह्मण है, जो जानकार है, वो जिनके पास ज्ञान ज्यादा है उनको सम्मान करेंगे, भले एज कितना क्यों हो। तो इसलिए आप, हम तो भाई ऐसे नहीं, तो यू आर सो क्वालिफाइड, आप प्रणाम करते ना, क्या है, क्या चीज क्यों आए मेरे पास ना, हमारा काम करना होगा, हमारे गुरु बन जाए। गुरु? आपके गुरु? आप मेरे पिता के समान पितृव्य हैं। नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं, काम के समान में ऐसा होता, प्लीज आप ऐसा मत करो। सारे देवता मिल करके इतने रिक्वेस्ट किए तो विश्वरूप बेचारा मान गए, बोले चलो जितने भी पुरोहित कर्म है, गर्हित कर्म है, सबसे थर्ड क्लास काम है पुरोहित काम करना। बोले मैं कभी नहीं चाहता हूँ पुरोहित काम करूं, लेकिन आप सारे मेरे अंकल से, इतने मेरे सुपीरियर से सब आके बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप लोग के उपकार के लिए, आपके काम करने के लिए मैंने पुरोहित स्वीकार करूंगा आपका। तो सब खुश हो गए, फिर आपने फाइल सब दिखा, बोले ये प्रॉब्लम है हमारा, शट आउट करो। तो पूरा फाइल खोल करके स्टडी किए, केस स्टडी किए, बोले देखो मैं अब कर सकता हूँ उपाय, ना क्या ना मेरा पास नारायण कवच है। तो नारायण कवच किसी ख्याति है उनको, नारायण अस्त्र का कवच, वो इंद्र को बैठा करके उनको शिष्य बना कर उनको खूब ट्रेंड अप किए, उनको पूरा पक्का कर दिया नारायण कवच में, उनको पूरा नारायण कवच शिक्षा दिला दिए, ट्रेंड अप कर दिए उसमें, नारायण कवच धारण किया इंद्र ने। इस नारायण कवच के सहायता से इस देवताओं ने असुरों को परास्त कर दिए, वो अपना राजधानी वापस लिए। इस नारायण कवच इतना पावरफुल था, तो खुश हो गए भाई, अपने गुरु जी की कृपा से हमको वापस, हमको अपना सब धन संपत्ति सब मिला, सब कुछ मिला, वहाँ खुश हो गए थे। और घर में रखे थे कुछ बड़े सम्मान से रखे थे। तो विश्वरूप जी के तीन हेड था, तीन सर था, तीन सर वाले थे, ब्राह्मण थे, तीन सर था, तीन मुंह था, मुंह था। तो एक मुंह से तो वो देवताओं के सोमपान करते थे, एक मुंह से असुरों के खान खाते थे, एक मुंह से मनुष्य से खाना खाते, तीन प्रकार से खाद्य तीन प्रकार से खाते थे। गड़बड़ क्या था, उनके पिताजी तो देवता तो थे, देवगण थे तुष्टा जी, लेकिन उनका माँ जो थी वो थी असुरकुल की, तो इसलिए उनके मम्मी के साथ भी रिलेशन तो था और पापा के साथ भी था, तो इसलिए देवताओं को तो काम किए, देवताओं घर में रहते थे, लेकिन मम्मी याद थी, मम्मी के सब मामा जी अगर तो सब असुर होंगे ना, बोले मामा जी गए नारायणंग माथुड़ा कर्म, लड़कों का मामा जी के सन्नाता ज्यादा होता है, तो उनका मामा जी की याद आता। तब जब वो यज्ञ हवन करते थे प्रतिदिन अग्निहोत्र, तो माइक्रोफोन के सामने ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः ऐसे कर करते थे इंद्राय देवताओं के, लेकिन फिर साउंड को ऑफ करके वॉल्यूम लो करके अब अपने मामा जी को ही देते थे आहुति, असुरों को ही देते थे, लो वॉल्यूम करके देते थे, लेकिन पता तो वो बात किसी ने मार किया था इंद्र को जाकर बोला, पता है तुझे तुम्हारा गुरु जी पुरोहित जो है तुम्हारे माल मसला लेकर के, तुम्हारी घी, तुम्हारी चारू सब तुम्हारी तुम्हारी ये में देता है, उनको सप्लाई उनको देता है, माल उनका सप्लाई भेज देता है। इंद्र ने गुस्सा हो गया, क्या अरे भाई अलग से देता महामारी माल, लेकिन उनको देता है ना देता। तो एक दिन उन्होंने कर रहा था, इंद्र को लेकर देखा, इंद्र ने स्वयं देखे उनके सामने, उन्होंने चुपचाप असुरों को आहुति दे रहा। इंद्र ने इतने क्रोधित हो गए, जिनके कृपा से, जिनके सहायता के बल से उन्होंने अपने घरबड़ी वापस पाए, जीवन फेरंत पाए, और ब्राह्मण है, लेकिन इतने गुस्सा हो गए, क्रोध हो गया कि क्यों मेरे समझ लेकर दूसरे को मेरे शत्रु को हेल्प कर रहा दे रहा है करके गुस्सा में जा करके उनके तीनों सर काट दिए, बेहडर गला काट दिया ऑन द स्पॉट मर्डर के, तीनों सर काट दिए, काट दिए तो मर गया। एक तो गुरु हत्या, दूसरा ब्रह्म हत्या, दोनों लगे। अब क्या करें? तो जा करके जो उनका जो पिताजी थे विश्वरूप के त्वष्टा, उनको जब बुलाया उनके बेटा को मार दिया, बुलारी मेरे बेटा को पुरोहित ब्राह्मण बना कर एक काम निकले उसको मार दिए, तो बड़े क्रोधी हुए, क्रोधित हुए। त्वष्टा जी ने एक इंद्र मारक यज्ञ किए, क्या किए? इंद्र को बद्ध करने के लिए यज्ञ किए। बोले यज्ञ में इसे असुर प्रेरक जो इंद्र को बद्ध करने लगे, वो कर रहे थे स्वाहा, करते करते बूढ़े हो गए थे, उनके दांत निकल गए थे, प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो गए। इंद्रो शत्रु विवर्धस्व, ये उच्चारण में थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखिए मंत्र ही गड़बड़ होता है, मंत्र में थोड़ा सा मात्रा हर्षकार और इस प्रकार को इकार उकार भेद भी हो जाए, कोई लंबा कोई कम, ये ध्वनि में कोई थोड़ा गड़बड़ हो जाए तो मंत्र का रिएक्शन बिल्कुल उल्टा भी हो सकता है। चाहे आप में से कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है? नहीं है इलेक्ट्रिकल वाले। अब देखो 35 साल इलेक्ट्रिक के साथ काम करते हैं, एक दिन बाई मिस्टेक इलेक्ट्रिक शक्ति थोड़ी देखेगा, चलो मेरा नाता 35 साल से उनके साथ है, अगर एक दिन थोड़ा मिस्टेक नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए थोड़ा छोड़ दो, अपना तो इतने दिन का रिश्ता है, छोड़ेगा? बाई चांस एक दिन पॉजिटिव से नेगेटिव मिल गया तो ऑन द स्पॉट सोचेगा नहीं, वहीं पर राम नाम से कर देंगे। ये है जो मंत्र तंत्र जंत्र आदि है, वो कुछ नहीं देखेंगे आपके नाता रिश्ता कितने दिन का, कुछ को मिस्टेक मिक्स इमीडिएट रिएक्शन, तो ये मंत्र का रिएक्शन। और मंत्र का उच्चारण थोड़ा सा गलती हो गया तो इंद्र को क्या मारेगा? इंद्र उनके बेटा को मारने के लिए आया, जो वृत्रासुर को पैदा तो किए थे, हाँ भयानक असुर वृत्र पैदा हुआ, लेकिन इंद्र को मारने की वजह से इंद्र द्वारा मर गया। तो जो वृत्रासुर पैदा हुआ कि ब्रह्म शक्ति से पैदा हुआ, जब कैसे इतने बड़ा भयानक असुर हुआ तो उसको देख करके देवताओं का हाहाकार मच गया। सारे देवताओं ने ऋषियों ने ब्राह्मण ने बोले ये क्या असुर पैदा कर दिया उन्होंने, इतना टमाट रिष्ट आ गया क्या करें। और वो कोई किया नहीं, देवताओं ने खुद किया, कोई आपने दूसरे आदमी थोड़ी किया, कौन किया उसको? तुष्टा ने, जो आपने पार्टी के लोग किया उस समय आकर के। तो इसलिए ये शिक्षा है, आपने संबंधी लोग को कभी रुष्ट नहीं करना चाहिए, वो रुष्ट होकर अपना भेद सब जानते गड़बड़ कर देंगे। रावण जब हार गया उनको पूछा गया, बोला अरे तू क्या हराएगा, मेरे विभीषण घर बंगा रहा नहीं होता तो मुझे ना कहना, तो हमेशा गड़बड़ भी होता फ्रॉम इन हाउस, पराजय हमेशा स्वशत्रु करते हैं। तो उन्होंने जब सारे देवता मिल करके देखो क्या किया जाए, तो सब मिल करके आए असुर मारने को, अभी अभी प्रकट हुआ है अभी भी मार डाल, सारे देवता उन्हीं असुर सब मिलकर अपना अपना सारे अस्त्र को मिलाए, सारे तेज को मिला करके गुस्से में आकर अभी भी यज्ञ से पैदा हुआ था उसको मारने के लिए आए, लेकिन वो इतने विशाल विकटाल रूप था, इतने भयानक था, एक सूर साथ में त्रिशूल लेकर भागा, उन्होंने फिर भी देवताओं ने साहस करके सारे अस्त्र शस्त्र उठाकर मारने, वो मारेंगे क्या, वो गया ब्रेकफास्ट की तरह सारे अस्त्र खा गया, निकल गया सारे। देवता लोग ने तो हालत फूट गया, बाप रे बाप, हमारा सारे राइफल और क्या बोलते हैं उसको जितने जितने तोप कमान सारे, वो तो पता नहीं कहाँ निकल गया, कहाँ गया सारे, इतने डर गए, सबका कपड़ा खराब होने लगा, थर 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 कांपने लगे, बोले क्या करे। लेकिन वृत्रासुर इतने सिविलाइज था, वो बोला बहुत डर रहे उनको नहीं मारूंगा, वो खड़ा था, बोले डोंट वरी आप ज्यादा नहीं करूंगा, बाथरूम फाथरूम हो या फ्रेश हो जाए, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। वो खड़े रहे तो इंद्र आदि तो इतने डर गए थे, बोले आप क्या कर सकते, बताओं डर जाते हैं तो भगवान की सहायता लेते हैं। अब घर नहीं गए वापस, वो युद्ध भूमि में को किनारे में पेड़ के नीचे बैठ करके भयानक तप करने लगे, प्रार्थना करने लगे, भगवान इतने आतुर प्रार्थना की, सारे ऋषि ब्राह्मण देवता मिल करके समूह से कंग्रीगेशन चैंटिंग ऐसे किए तो भगवान पैदा हो गए, वहीं प्रकट हुए। बोले क्या है देवता, इतने को ना सा मर गए। इतनी भारी विपत्ति, हमारा सारे संपत्ति, सारे तोप कमान राइफल सब मिला करे टक खा ले एक बार। ये तो इतने कृपा महती है उनका कि हमको खाया नहीं, छोड़ दिया खड़ा है। तो बाप रे बाप, इतने भयानक सो बाप, बचाओ बचाओ, पुलिस सार मर गए, बचाओ बचाओ बचाओ। इतने मरने बचाने के लिए आप भागवत में नमस्कार पढ़े में एक अध्याय सारे देवताओं को स्तुति है भगवान को। क्या लखे स्तुति किस लिए किए हैं? प्लीज सेव अस, मर गए सारे, बचा उनसे बचा दीजिए हमको, किसी भी कीजिए उनको मार दीजिए, कुछ कीजिए, हम नहीं कर पाएंगे, बचाइए, हम खूब डर लग रहा है उनके सामने। तो इतने डर डर के जुमे भगवान, कोई बात नहीं, भगवान संतरा डोंट वरी आम दिया। ओके सर ठीक है, अब क्या करें? बोले कोई बात नहीं, आपको मारना पड़ेगा, मैं आपका हूँ, मैं उपाय बता देता, मैं नहीं मारूंगा उसको। आप नहीं मारेंगे? ना मैं नहीं मारूंगा, ब्राह्मण है, मैं क्यों मारूंगा उसको, मैं नहीं मारूंगा, लेकिन बताता हूँ कैसे मारेगा ना, प्लीज बताए। बोले देखो वेरी सीक्रेट, गुप्त बात है, गुप्त उपाय मैं बता देता हूँ कैसे मरेगा। क्या? बोले मरने के लिए उसको आपके पास कोई अस्त्र शस्त्र उसको मार नहीं सकता। श्री सब सुन रहे थे, फिर क्या करें आप चक्र? बोले नहीं मैं चक्र नहीं। फिर बोले आपके एक नया अस्त्र फॉर्मूला में बताता हूँ, आपको बनाना पड़ेगा। अब मटेरियल सब लाना पड़ेगा, मैं फॉर्मूला बताता हूँ, ब्लूप्रिंट भी देता हूँ, आप इस सब को बुलाओ, उनको मैं ट्रेनिंग दे देता हूँ, वो बनाएगा, डिजाइन जो मैं देता हूँ डिजाइन से बनाएगा, लेकिन मटेरियल से, कौन सा मटेरियल, किस मटेरियल से बनेगा ना? आपको जाना पड़ेगा धरती में, वहाँ नमीशारण्य क्षेत्र में एक ऋषि तपस्या कर रहे हैं, बड़े तेजस्वी ऋषि, महातपी, उनका नाम है दधीचि। दधीचि ऋषि की जा करके उनके अस्थि को लाना पड़ा मानकर, उनके हड्डी को लाओ, और फिर मैं जो डिजाइन बताऊंगा, जो दबे इसके से वैसे कराना, उसको बना देंगे, उसको बनाने के बाद वज्र बनेगा सहस्र आरी विशिष्ट, उसी से मरेगा बताओ। तो ये बात सुन करके इंदिरा देवता मुँह सूख गए, सर और किसी को भेजते दादी जी के पास सामने। बोले क्यों? क्यों सर? सब पहले कुछ दिन पहले गड़बड़ हो गया था। क्या गड़बड़ हुआ था? क्यों? देवताओं के, आप जानते ना देवताओं को बीमार नहीं होता, अमृत पीते हैं ना, कोई बीमारी नहीं होता, तो इसलिए कोई डॉक्टर का तो आवश्यकता है नहीं, ना हॉस्पिटल का आवश्यकता है। लेकिन बेचारे जो घोड़े से बने थे अश्विनी कुमार दो हैं, वो MBBS के थे, वो फिजिशियन बने, अब बन करके गए देवताओं के यहाँ, तो कोई हॉस्पिटल में पूछते नहीं उनको, कोई जरूरत नहीं, कोई पेशेंट ही नहीं आता, करेंगे क्या बेचारे। तो इसलिए उनको सारे देवताओं के जब भोज भात होता है, उनको बैठ तुम साइड में बैठो, कोई सम्मान नहीं करते उनको, कोई सम्मान नहीं कर, इसे किए बोले क्या तू तो इसी पढ़ क्या, इसे को मतलब नहीं, क्योंकि जब तक ब्रह्मज्ञान नहीं हो तो हमारे पंक्ति में नहीं बैठ सकता उनको, तो उनकी पंक्ति में नहीं बैठा। तो बेचारे अश्विनी कुमार देव को बड़े ह्यूमिलेटेड फील कर रहे थे, पूरे सभी लोग के सामने उनको लाइन आउट करेंगे, यहाँ हमारे साथ थोड़ा डॉक्टर करके आए, हमको जरूरत नहीं को मतलब जब कोई समझ नहीं, तो उनको इतने खराब लगने लगा, उन्होंने बोले कि ये डिग्री से कोई मतलब नहीं, हमको एक ब्रह्म ज्ञान प्रैक्टिस करना पड़ेगा, भक्ति शास्त्री करना पड़ेगा, हाँ नहीं तो होगा। भक्ति शास्त्री पढ़ाने के लिए पता लगा कौन पढ़ाता है, कौन किसी को पता है, ट्रेंड ऑफ टीचर कौन है, पता लगा है कि उनके जन्म स्थान है, बोले यहाँ पे दधीचि ऋषि है, यहाँ देवता तो पढ़ाएंगे, इंद्र ने सबको मना करते था, जहाँ भी कोचिंग सब थे, ट्रेनिंग सेंटर था, भक्ति शास्त्री का सबको मना करते, क्लियरली स्टैंडिंग ऑर्डर, ये दोनों को कोई नहीं पढ़ाएगा, वो दोनों डिग्री अगर ले लेंगे फिर अपना साथ आकर बैठेंगे, हम नहीं चाहते ये हमारे साथ बैठे, रिजेक्टेड। तो इंद्र की बाई ऑर्डर कोई जो सेलेस्टियल यूनिवर्सिटी में उनको तो कोई एडमिशन ही नहीं हुआ, कोई एडमिशन नहीं हुआ, बेचारे बड़े परेशान हुए, ह्यूमिलेटेड फील कर रहे थे। तो पता लगा कि यहाँ उनके घर के पास, उनके जन्म स्थान के पास नवीसारण में दधीचि ऋषि थे, वो भी कोर्स कर सकते हैं, वो सर्टिफाइड टीचर है, ब्रह्म ज्ञान वेत्ता, ब्रह्म वेत्ता है। तो आ करके अश्विनी कुमार दे यहाँ उनके पास पहुँच करके खूब गिड़गिड़ाए प्रार्थना के, हाथ पर जोड़ करके अश्विनी कुमार दधीचि ऋषि के पास, बोले प्लीज 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 क्या करो ना, प्लीज कृपा करके हमको पढ़ा दीजिए। बोले अरे तुमको पढ़ाओ ना, प्लीज 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 पढ़ा, हमारा एडमिशन हम करना चाहें, जो फीस होगा जमा करेंगे, जो भी आप कहेंगे। तो दधीचि ऋषि बोले कोई बात नहीं, मैं अभी थोड़ा कोर्स चल रहा है, सेकंड बैच में माना डेट दे दिया उनको, डेट में तो खुश होकर चले गए, खुश होकर चले गए, डेट फिक्स हो गया, हम तो जाकर कोर्स कंप्लीट कर देंगे और क्या है। आप डिग्री सर्टिफिकेट लेकर आएंगे, अथॉराइज सर्टिफिकेट कैसे मानेंगे नहीं हा? तो ये बात मैसेज लीक हो गया, इंद्र को पता चल गया गड़बड़ी। इंद्र का भी कम्युनिकेशन बड़ा तेज था, तो उसको पता चल गया, बोला कैसे, मैं नहीं चाहता हूँ कि दधीच किसी को पढ़ा देगा, हु विल रिकमेंड, मैं रिकमेंडेशन नहीं करूँगा, कैसे हो सकता, विदाउट रिकमेंडेशन कैसे पढ़ा नहीं सकते। बोला ये तो पता नहीं, हमारा रिकमेंडेशन यहाँ काम नहीं करेगा, उनका टेरिटरी अलग है, वो तो मटेरियल वर्ल्ड लोग में, ये मृत्यु लोग में। तो बोला मृत्यु लोग होना सके, मुझे आकर अभी तो इंद्र ने आया नमशरण में, इंद्र आ करके दधीची को डांटा उनके आश्रम में जाकर। दधीची जी देखा पी के भी तो 100 आंख वाले हैं, मेरा पूरा शरीर आंख वाले है, सहस्र आंख है। बोले क्या है देवराज, देखो दधीची जी आप ऋषि हैं, ठीक है मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन खबरदार, मैंने सुना कि आपने उनको पढ़ाने के लिए, हाँ उन्होंने आए थे, मैं उनको एस कर दिया हूँ, डेट कर दिया, मैं खबरदार नहीं पढ़ाना, जिसे माई आर्डर नहीं पढ़ाना, मना करता हूँ, मेरे रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मैं वचन दे चुका हूँ, खबरदार अगर मेरा बात मान कर पढ़ाएंगे तो गला काट दूंगा आपका, सीधा मार डालूंगा आप। ऐसी धमकी दिया तो बेचारे डर गए, भाई कोई हाई प्रेशर, ये कोई सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेशर नहीं, वही देवताओं की तरफ से इतना हाई प्रेशर दिया आकर मर्डर कर दूंगा तुझे, दादी से डर गए। अब जब डेट नज़दीक आया तो असन का दो स्टूडेंट आकर मुझे सारा सारा बोले कि देखो तुम्हारा राजा आकर मुझे डेथ नोटिस देकर गया है, खूब डांट कर गया, मार देगा मुझे ना। गुरुजी कोई डरने का बात नहीं, कोई डरने का बात नहीं क्या, बोले हमारा काम अभी तक तो कुछ आया नहीं, अभी तक काम में आए ना क्या ना, वो आकर आपको गला काट देगा, बोला ना हम पहले सबको गला काट देते बोले क्या तू मेरे पढ़ेगा ना, हम बताते सुनिए तो सही सर। बोले देखिए हमारे पास ये हम एक्सपर्टिस है, हम जो पढ़ कर आए हैं हमारे पास ये ट्रेंड अप है कि आपका गला को हम काटेंगे, काट कर फ्रिज में रख देंगे, फ्रिज में रख करके दूसरे किसी का गला ला कर जॉइंट कर देंगे, पता भी नहीं चलेगा, आप जी जाएंगे, फिर हमको पढ़ा देंगे, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जैसे इंद्र को पता चलेगा वो आकर गला काट देगा, डुप्लीकेट गला उसको फेंक देंगे, फिर जो आप ओरिजिनल गला फिर लग लगा देंगे, आप जैसे तैसे हो जाएंगे। क्या मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट था उनके पास में, क्या कोई आईसीयू में जाना, ऑपरेशन थिएटर में जाना नहीं पड़ेगा, बोले यहीं पे ही कर देंगे आश्रम, वही बेड के नीचे कर देंगे ऑपरेशन। तो उन्होंने बोले बोले आप सर आप कृपा करके परमिशन दीजिए, हम व्यवस्था कर रहे हैं, पक्का एग्रीमेंट साइन। तो उन्होंने गला काट दिया गुरु जी का, पढ़ने से पहले गुरु जी से पढ़ने से पहले ऑडिशन में गुरु जी का गला पहले काट दिए, अब लेकर फ्रिज में रख दिए, फ्रिजर में अब कौन सा गला रखेंगे, तो देखे घोड़ा घूम रहा था, एक घोड़ा का गला काट कर लिया, घोड़े को गला काट कर लगा के गुरु जी के गला में फिट कर दिए, और घोड़े को जो बड़ी था उसको भी रख दिया फ्रिज में, एक के सर और उनके और इनके बड़ी उसको फ्रिज में रख दिए, बाकी वो सर ला कर इसमें लगा करके और जॉइंट कर दिए, वो विद इन आवर्स फिट होकर बैठे, और बोले कोर्स शुरू कीजिए, तो पढ़ाना शुरू किए, पूरा कोर्स कंप्लीट कर दिए, पढ़ गए एग्जाम दे दिए, सर्टिफाइड हो गया। जैसे सर्टिफिकेट ने कि देवताओं के पास गए, इंद्र ने गुस्सा हुआ, बदमाश मैं बूढ़ा को धमकी दे दिया था, मैंने फिर पढ़ा दिया उनको, मेरा रिकमेंडेशन बिना आया, गुस्सा में आया बिना पूछे आकर धड़ से काट दिया, देखा भी नहीं, पहले देखकर गया था, फोटो तो दूसरा था, अभी फोटो दूसरा किसी देखा भी नहीं इतने गुस्सा में था, जो गुस्सा होता ना तो देखा नहीं पड़ता कौन है सामने की नहीं, गुस्से में आया धड़ाक से गला काट दिया, तलवार निकाल काट दिया, काट कर चला गया मजा। और उनके जो उनके पीछे पीछे वो आए थे, बोले जा रहे वो काट रहे गला, वो पीछे पीछे खड़े कर बैठे थे, जैसे आकर गला काट दिए, अश्व से उनका गले लगा था, तो इसीलिए जो ब्रह्म ज्ञान पढ़ाए थे उनने, आज भी ब्रह्म ज्ञान का नाम है अश्व शिरा ज्ञान। क्या है? अश्व शिरा ज्ञान, क्योंकि अश्व के सिर से ज्ञान दिया गया था, इसलिए उसका नाम अश्व शिरा ज्ञान पड़ा, वैदिक ज्ञान ब्रह्म ज्ञान। तो अश्व शिरा ज्ञान को प्राप्त किए, तो आकर फिर अश्व का हेड गला काट दिया उन्होंने, जब गला काट दिया तो डेड बॉडी होकर पड़े, तुरंत उनके दो स्टूडेंट पीछे छिप कर आ गए, आकर एक घोड़े के जो सर काटा हुआ था उसको लेकर जो घोड़े के बड़ी था उसमें जोड़ दिया उनको, मुझे बोले तुम जाओ, और जो उनका असली सर था फ्रिज में उसको ला कर फिर कर गुरु जी थैंक यू ओके नो प्रॉब्लम जैसे कहते ऐसे हो। इंद्र पता चला वो आकर देख कर बोला अरे मैं गला काट कर तो फिर बच गया, आप समझ में नहीं आया कौन सा गला था कि इसे क्या होगा, बोले बोले तो सर्टिफिकेट लेकर दिखा दी, एंट्री हो गया उनका, देवगण में आ गए, और देवगण में आगे में, तो इसलिए उनका दधीचि के साथ बड़ा भारी। आप थोड़ा सोचिए भाई, जो आकर धमकी देकर गला तक काट कर गया है, अभी भगवान क्या बोलते हैं, उन्हीं के पास जाओ, उनके हड्डी लाओ। बोले उनको जाकर कैसे मांगेंगे। वो भगवान को बोले, बोले सर कृपा कीजिए, हमारे साथ उनका बड़े ऐसे हो चुका है, हम कैसे जाएंगे उनके पास, हमें जाना तो वहीं पड़ेगा, और कहीं काम नहीं ना, प्लीज ना, कोई बात नहीं, अभी तो नई एंट्री किया ना अश्विन कुमार, उनके शिष्य हैं, उनको साथ में ले जाओ, उनके चेले को साथ में ले जाओ, उनके साथ डीलिंग है, और आप जाओ, वो इतना नहीं खराब नहीं, मान जाएंगे बात आपको थोड़ा। अब इतने डरे थे तो वृत्तासुर का धमकी देखते ना, कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए। वृत्तासुर का भय से अपने जीवन बचाने के लिए सारे देवताओं के डिपार्टमेंट हेड, सारे इंद्र आदि आए बेशरम दधीचि के आश्रम में विचरण में आए, सारे आए, सारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वाले आए, आकर के नक के दधीचि जी बैठे थे, आकर के सारे धम धम करके प्रणाम किए, दंडवत प्रणाम किए, और बड़े आज तो बड़े हम्बल, प्लीज सर हेल्प अस सर, प्लीज एक्सक्यूज अस सो हेल्प अस सर, कृपा कीजिए, मदद कीजिए, मदद कीजिए। दधीचि बोले हो क्या गया, तू तो कुछ दिन पहले आकर इतने डमके आ रहे, मेरा गला काट गया, दो दिन इतनी धमकी दे रहा था, मारपीट किया, मारपीट की कोई बात थोड़ी, गला काट गया करके, इतने खतरनाक तू था, इतने पोस्ट पवार तरह, आज आकर ब्रेकेट गिराता है, प्लीज हेल्प अस, प्लीज बचाओ बचाओ सर। वो अकेला भी नहीं, सारे पार्टी लेकर आए, क्या बात है सर, क्या बताओ आप, प्लीज कृपा कीजिए, बताओ ना, बताओ तो सही, बताओ बताओ सर, कुछ बुरा नहीं मानेंगे ना, बताओ हम, प्लीज कृपा करके आप मर जाइए। किसी को भीख मांगने जाएगा ऐसा, भी किसी को मांगने जा करके प्लीज बचाइए, हम मर जाएंगे, प्लीज हेल्प कीजिए, हेल्प कीजिए, मर जाएंगे नहीं तो प्लीज, क्या हेल्प करूँ, क्या मदद करूँ, बताओ बताओ, फटका ने डूब करू ना, आप मर जाइए। इतने बेशरम कोई होगा कोई, लेकिन बोले क्या, मैं मर जाऊं किस लिए, ना हम आपका हड्डी लेकर जाएंगे। आप जिंदा तो हड्डी तो ले नहीं सकते, आप मरेंगे जब तक आपको हड्डी निकाल कर लेकर जाएंगे, जी दे अवस्था तो हड्डी ले नहीं सकते, तो इसलिए आप प्लीज मर जाइए। उसको सुन करके दधीचि बोले, क्यों मरूं, क्यों हड्डी ले ना, क्या बताऊं दधीचि जी, वृत्तासुर बड़े भयानक, हम बहुत डरे हैं, खा जाएगा सब, मार जाएगा, खा जाएगा, हम भगवान से प्रार्थना करें, भगवान स्वयं प्रकट होकर बोले आपके हड्डी से काम बनेगा, वज्र बनेगा, तो इसलिए आपके, आप मरेंगे, आपके हड्डी लेकर जाएंगे तो वस्त्र बनेगा, तो उसको मारेंगे। दधीचि जी हंस 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 कर बोले, बोले अरे बेशरम असुरों, देवताओं, आपके प्राण को बचाने के लिए मेरे प्राण लेने के लिए आ गए, आप तो स्वयं मरने के लिए डर रहे हैं और मुझे मारने के लिए तैयार हैं, शर्म नहीं आता, तुम जो हार है तो मरने के लिए डर रहे ना, मुझे किसी मरने के लिए कहते, मृत्यु भय जैसे है आपको, मृत्यु भय सबको है। इंद्र बोला, मैं तो बोल ही रहा था पहले बुढ़ा देगा नहीं, मुझे पता था पहले से हमारा रिश्ता खराब, वापस गए, मन मन मार गए उनको, बड़े दुखी हो गए, बोले यार ये बुढ़ा देगा नहीं, अब तो क्या करें, जाकर फिर भगवान के पास पहुंचे, बोले सर आप मना करते थे सर, आप क्यों यहाँ भेजे, वो तो ऐसे डांट रहा है, हमको बेशरम करके गाली दे रहा है, हम बहुत नाक रगड़े, पैर पकड़े उनके, शरम मर जाइए प्लीज, हेल्प भी मर नहीं रहा है। हमको उल्टी खोली खोटी सुनाया, भगवान ने बोले कोई बात नहीं, थोड़ा सा सुन लो, जाओ फिर करेगा आपका, जाओ दोबारा जाओ, वो दोबारा आए बेशरम। इतने जीवन की लालसा है मरने की, भय फिर आए, फिर आकर जब इस बार दधीचि बोले अरे उनका हद हो गया, उनका फिर आ गए। बोले कोई बात नहीं, इतने दुख मत हो, मरना तो आज नहीं तो कल होना ही था, मृत्यु को कोई बचा नहीं सकता, मरना तो अवश्य है, लेकिन आप जैसे साक्षात भगवान के आदेश और आप देवगण के उपाय होगा, आपको भलाई होगा, उपकार के लिए अगर मैं मरूं तो इससे बढ़कर मृत्यु और क्या हो सकता है। ऐसे मर जाता कभी कहीं घाट वाट में कीड़ा कोई मतलब कोई कोई हो जाते, बेकार हो जाता मृत्यु, लेकिन मर करके अगर इतने बड़े देव जगत के कल्याण और भगवत इच्छा पूर्ति हो, इसी मृत्यु पर कहाँ मिलता, ऐसे तो मरना तो होना ही, तो इसलिए मैं खुशी खुशी मरना चाहता हूँ। अरे सब खुश हो गए, देवता खुश हो गए, तुरंत दधीचि जी ने अपने ध्यान मुद्रा से अपने शरीर छोड़े और सब मिल करके उनको चमड़ा वमड़ा उतार करके जैसे भी जो करके व्यवस्था करके हड्डी के निकाल करके ले गए। लेकर गए विश्वकर्मा जी को तो ऑलरेडी डिजाइन मिल गया था तो उन्होंने लेद में लेकर गए, लेद मशीन में डाल करके उसको बनाए। सहस्र आर युक्त 1000 आर वाले स्पोक लगा करके वज्र बना कर दिए और उस वज्र को लेकर के वृताश्र बद्ध कर लेती। वो जो घटना दधीचि ऋषि का आश्रम जिनके तेज ब्रह्मा भगवान बोले थे, बोले ये ऋषि के तेज है और उसमें मेरे शक्ति का आवेश होगा, इसी शक्ति से वृताश्र बद्ध होगा। तो ये ऋषि दधीचि जी का ये तपस्थली था। ऐसे कहते हैं कि उनका एक पत्नी थे गभस्तिनी, लोप मुद्रा के बहन गभस्तिनी, वो उनके पत्नी थे दधीचि जी के। दधीचि जी के इस प्रकार के देवताओं के उपकार के लिए स्वयं ही कमिटेड सुसाइड कौन से अपने जीवन छोड़ दिया उन्हें जानबूझ कर उनके कल्याण के लिए। तो उनके पत्नी को बड़ा दुख हुआ और उनके पत्नी अभी बालक अब उनके छोटा अवस्था में था लेकिन फिर भी अपने पति के कारण उन्हें सती हो गई गभस्तिनी। तो उनके छोटा बच्चा था, कोई नहीं रहे, एक ही पुत्र था, माँ तो सती की हो गई, पति के साथ चली गई। तो वो जो छोटा बेटा था कोई नहीं थे, वो एक पीपल का पेड़ था, पीपल के छाली खाली खा करके ऋषि खा करके बच्चा था इधर वही पानी पी के छाली खा कर। तो उनका नाम वो ऋषि बना, उसका नाम पड़ा पिपल आया ना, पिपलान ऋषि की अभी तो स्थली यहाँ है, इसे इसे वो ऋषि बने यहाँ। इस प्रकार से एक बार यहाँ असुर शिरोमणि लक्ष्मण प्रहलाद जी ने भी यहाँ आए थे। प्रहलाद जी को शुक्राचार्य ने, प्रहलाद जी उनको पूछे थे, बोले गुरु जी एक बार हमको मैं तीर्थ करना चाहता हूँ, सारे ब्रह्मांड में सबसे बड़े तीर्थ के बात में बताओ। तो नवीसारण्य क्षेत्र के तीर्थ की महिमा शुक्राचार्य ने प्रहलाद जी को सुनाए, बड़े भव्य वर्णन किए कि हाँ जैसे मैं बताऊँ इसी वर्णन में आता है कि कोई नवीसारण्य क्षेत्र को मैं जाऊँगा नवीसारण्य, ऐसे मन में विचार किए तो अर्ध पाप नाश हो जाए कल इच्छा प्रकट करने से। और बहुत मन कुल यहाँ पर स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश द्रवीभूत होकर के धनमती गोमती नदी के रूप में प्रवाहित हैं। इस प्रकार के वो चक्र कुंड के महिमा सब इस अनेक तीर्थ के महिमा इस विश्व में सबसे परम पावन पवित्र तप तीर्थ वही है इस वर्णन के। भगवान राम यहाँ लगभग 4 बार आए हैं, जब वो गुरुकुल में पढ़ रहे थे स्टूडेंट कैरियर में तभी आए थे यहाँ पिकनिक में, उसके बाद में पुत्र श्री जगह हुआ था, उसके बाद में जो राज तिलक हुआ था उसके बाद में आए थे वहाँ यज्ञ करने के लिए पाप निवृत्ति यज्ञ। उसके बाद में जो लव कुश के साथ मिले तभी आए थे, अश्व घोड़ा जो लेने के लिए तभी आए थे। कई बार 3-4 बार भगवान राम ही आए हैं इधर। और ऐसे ऋषि आश्रम तो था ही कई से ऋषि। तो प्रहलाद जी ने सत्ययुग की बात है ये तृतीय प्रथम सत्ययुग में प्रहलाद जी जब सुतुरलोक में रहते थे बलि के साथ, तभी शुक्राचार्य से उनके सत्संग शुक्राचार्य बताए नवीसारण्य की महिमा। उनको नवीसारण्य का महिमा सुन करके प्रहलाद जी ने विचार किया कि मैं जाऊँगा भगवत दर्शन करने के लिए नवीसारण्य में। वो बड़े उत्साह से आए, जानते हैं अरण्य जंगल है तो जंगल को आएंगे तो प्रहलाद जी अपने राइफल साथ में लेकर गए। हाँ ना इतना तो पशु हिंस पशु बहुत जंगल में रहते हैं। तो आए, आकर जब नवीसारण्य में प्रवेश किए तो जा रहे थे प्रहलाद थे महाबलशाली भगवत भक्त थे। आए तो एक उनको यहाँ शिकारी मिला, जंगली लोग, जंगल था ना बड़ा भयानक, एक जंगली आदिवासी शिकारी मिला। तो उन्होंने डाय कहाँ जा रहे, वो तपस्वी था और गरुआ वस्त्र पहना हुआ था सन्यासी जैसा, लेकिन धनुष बाण हाथ में लिया था। प्रहलाद जी देखकर तंग हो, लगता तो है साधु सन्यासी, मेरे हाथ में गन क्यों लिया है, धनुष बाण क्यों लिया है, ये कौन सा जात का है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। और उल्टी आकर उनसे झगड़ा किया, क्यों जा नहीं जा सकते। प्रहलाद जी बोले तुम क्या करिए, मेरा राज्य है, मैं चक्रवर्ती नरेश हूँ, आप क्या कहते हैं, मेरे पोता ये है। मैंने तो उनका साथ ललका लड़ाई हुआ दोनों का, बोला मैं जाऊँगा नवीसारण्य मेरे प्रभु को मिलने के लिए मैं जा रहा हूँ, बोला नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा युद्ध हुआ। प्रहलाद क्षत्रिय राजा थे, मैं थोड़ी छोड़ देंगे, तू एक जंगली तू मेरे साथ लड़ेगा, मैं लड़ेगा। खूब डंड करके युद्ध हुआ, अनेक दिन तक युद्ध हुआ, अनेक दिन तक। अब प्रहलाद जी देखे युद्ध में हार नहीं सकते, वो उनको हरा नहीं सकते थे, वो इतने प्रहलाद जी के पास भगवत कृपा से सारे दिव्यास्त्र के ज्ञान था, प्रचंड योद्धा थे, लेकिन फिर भी वो आदिवासी सबर किरात को नहीं हरा सकते, वो सारे काट कर देते। अंततः प्रहलाद जी निरुपाय होकर के, हतोत्साह होकर, कोई उपाय नहीं, बड़े दुखी होकर के आपने इष्ट देव कौन है, हाँ श्री नृकेसरी नरहरि को आकर के बड़े ध्यान से बड़े प्रार्थना करके किए और उनको अभिषेक करके एक सुंदर मालती और बकुल फूल की माला बना करके उन अर्पण के बोले, प्रभु आपके शरण में हूँ, आप ही मुझे कृपा कीजिए, आपके दर्शन के लिए मैं आया था। ये क्या शेड्यूल ड्राइव आकर घुस गया, मेरा हाल खराब करके रखा है, नहीं तो कई दिन से आगे नहीं बढ़ने देता, उसको टिकना मुश्किल होता है। तो बड़े प्रेम से स्वयं भक्ति माला पहना करके अभिषेक करके उन माला पहनाए, पहना करके प्रणाम करके नरसिंह कवच को याद जप करते करते गए। जा करके आज कमान उठे, युद्ध करके जैसे युद्ध कर रहे हैं, उनको नजर पड़ा उनके गले में, जो माला यहाँ पहना थे वो माला उनके गला में झूल रहा है। और गंडा उनकी बोले, माय गॉड, हुई हुई मैंने माला तो आज ही ताजा बना कर सुबह सुबह 8 बजे पहना कर आए, माला तो घूम रहा है। जब उसने बोले, आप कौन हो बताओ, ये माला कैसे गले में, माला कौन बना, तुमने बनाया, आप क्या शुद्ध करना था, आप पूछना था। तुरंत चरण में गिरे, माफी मांगे, मैं पहचान नहीं पाया। तो इसे भगवान यहाँ नित्य निवास करते हैं, नित्य निवास करते हैं। प्रहलाद जी को दर्शन दिए थे, इतने दिन उनके साथ लड़ाई किए, अंततः जब भक्ति पुष्प माला पहना, जब प्रहलाद जी ने देखे कि वो माला तो इनके गले में पड़ा, मैं जाना था वहां, यह माला तो यहाँ से वहां, उनमें तो ही तू मुझे माला डाल, तब भगवान प्रसन्न हो गए। तो इस प्रकार से प्रहलाद जी को दर्शन इस प्रकार हुआ था। इस प्रकार तो युग युग में भगवान यहाँ निवास करते हैं और सारे ऋषि मुनियों का पवित्र तपस्थली है। और क्योंकि निमिष क्षेत्र, एक निमिष क्षेत्र का एक और कथा आता है, यहाँ बहुत असुर राक्षस आदि रहते थे। तो जब सारे देवताओं ने जाकर के, ऋषियों ने जाकर भगवान को प्रार्थना की, कुछ कीजिए, यहाँ का हम इतने बढ़िया जगह है, लेकिन यहाँ ये असुर लोग राक्षस लोग आकर बहुत तंग करता हूँ। तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को भेजे थे, सुदर्शन चक्र आया, चक्र के ताप में विद इन ए सेकंड एक निमिष, निमिष शब्द भागवत में आया काल वर्णन में, तृतीय स्कंद भागवत में 3 लब का एक निमिष होता है। आप काल का जो विभाजन देखेंगे, त्रुटि लब ऐसे कई प्रकार से खंड विभाजन किया गया काल को, इसमें निमिष भी आया, एक निमिष 3 लब एक निमिष होता है। तो एक निमिष में जितने असुर थे सबको नाश कर दिया सुदर्शन ने वहां थे। तो इसलिए एक निमिष में सारे असुरों को नाश किया था, इसलिए इस नाम पड़ा निमिष क्षेत्र। और अरण्य था, इसलिए निमिष अरण्य हुआ। लेकिन हमारे लिए बाकी जो कुछ हो, यही भागवत, जो भागवत हम पढ़ रहे हैं, यही भागवत का यही अनुष्ठान हुआ था, यही उनका विचार हुआ था। हजारों संख्या में ऋषि मुनि उसको पढ़े थे, सुने थे, डिसाइड किए थे। और श्री सूत सोनक संवाद के द्वारा भागवत जो उसको हम पढ़ रहे हैं, यही उसका हमारे लिए यही इसलिए वरिष्ठ है, हमारे लिए बड़े पवित्र और हमारे लिए उपास्य तीर्थ है। क्यों भागवत क्षेत्र यहाँ पर कहते हैं कि व्यास गद्दी है, ये व्यासदेव जी आकर के सारे पुराण आदि को सब लिख वर्णन भागवत विभाजन वहीं किया था। ऐसे जो बद्रीनाथ गए थे वहाँ भी कहते हैं, यहाँ कल्प में कई कल्प में कई किया होंगे कई बार, ऐसे वर्णन है। सारे सुत गद्दी, व्यास गद्दी और सारे पुराण का पखर करता है। इस प्रकार से इस क्षेत्र में अनेक अनेक लीला संबंधित लीला हैं। तो आपका लास्ट है, मैं सोचता था कि आप कम से कम चक्र तीर्थ और गोमती तीर्थ दोनों में स्नान कर पाए, या एक में किसी में करें, थोड़ा और व्यास गद्दी और चक्र तीर्थ स्थान के दर्शन करेंगे शाम से पहले। और यहाँ जितने भी ऋषि मुनि आते थे, घोर जंगल था, तो अरण्य में जब भी आते थे उनको यहाँ कुकिंग फूड नहीं मिलता था, किसी नहीं मिलता, वहाँ हमेशा जो सीजनल फ्रूट बन के फल, जैसे ये सीजन में बेल, जामुन और आम, यही अरण्य फल है। तो ये वनवासी लोग वन में आकर के फल पाते। तो आज आपको आम तो शायद सबको दे ही रहे, जामुन भी मिलेगा, वो आप सब लाइन करके आएंगे, एक मिलेगा, कृष्ण लेकर आ जाएंगे जामुन प्रसाद आपके लिए, रास्ता में जो हवा आया ना साइक्लोन, आप पता है ना थोड़ा बारिश हुआ रास्ते में आते समय, तो आप लोग आएंगे भक्त लोग को इसलिए भगवान ने व्यवस्था कर दी, जितने पेड़ में जामुन था सब गिरा दिए। तो वो 50 रुपया दे करके सब थोक के खरीद लिया, बोले चलो बांट देंगे, फलाहार करवाएंगे सबको जामुन आहार। ये सचमुच भारतवर्ष है ना, एक जम्बूद्वीप का एक पार्ट है, आप वर्णन सुनेंगे भूगोल वर्णन में, ये जम्बूद्वीप ही भारतवर्ष है। जम्बूद्वीप के जानते किसको कहते हैं? एक जामुन का पेड़, एक सिंगल ट्री, एक जामुन का पेड़ है। इस जामुन का पेड़ में इतने बड़े बड़े जामुन का फल होता है, एक फल जब गिरता है, फल गिर कर फट जाता है, उसका जो जूस निकलता है, बड़े बड़े हाथी बह जाते हैं, डूब जाते मर जाते हैं, डूब बह के मर जाते हैं, ये छोटे मोटे बच्चे नहीं बह गए। एक जामुन फट जाता है, इतने जूस निकलता है, हाथी बह कर मर जाते हैं उसमें, और एक समुद्र की तरह से जामुन रस, जामुन के जूस से एक समुद्र, जाम्बू नदा समुद्र कहते हैं उसको, समुद्र बड़ा बड़ा। तो इसी के पार्ट है इंडिया, तो इसलिए जामुन फल का विशेष महत्व है। भगवान जगन्नाथ जी भी बड़े जामुन प्रिय, मैं आज बता रहा था आयुर्वेद के अनुसार ऐसे जामुन के महिमा बता गया, पूरे साल भर में क्या पूरे जीवन में कभी अभी कैसे ऐसे खाना खा लेते हैं, खाद्य खाते हैं जो पचता नहीं, जैसे कभी कभी हमारा बाल है कभी कभी चला जाता है और वो अंत में सट जाता है, किसी प्रकार से निकल नहीं सकता, आप जानते हो उसमें निकला नहीं जाता, चिपक जाता है, तो कोई उपाय नहीं निकालने का, केवल एक जामुन एक है उसके प्रभाव से निकाल देगा। जामुन का जो कस है, उसका रस है, इतने पावरफुल है, वो जितने प्रकार का रहे साफ कर, तो इसलिए जामुन खाना ही खाना चाहिए सीजन में, सीजन के अनुसार लेना चाहिए। वो आज तो बिल्कुल पेड़ से भगवान ने गिरा के दिए लेकर आए हैं आपके लिए थोक में, तो किसी ने जाकर के वो बकेट रखा हुआ ले आई, सब बांट देंगे। तुम्हारा जो लाल बैग है ना, उसमें साइड में वो नर्सिंग ऑयल भी है ना, वो ले आना। मायापुर से किसी ने